لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين. میرے محترم دینی بھائیوں, پچھلے درس میں بیماری کے تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بیماری ایک انسان کے لیے اجر و ثواب اور گناہوں کی مغفرت اور کفارے کا دروازہ کھولتی ہے. دنیا دار الفتن ہے, یہاں انسان پر ایک کے بعد ایک آزمائشیں, مصیبتیں, پریشانیاں آتی رہتی ہیں. ان مصیبتوں سے فرار انسان کے لیے ممکن نہیں, لیکن ان مصیبتوں میں ایک انسان اپنے دین پر جم کر, اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر کے نہ صرف اجر و ثواب کا حقدار بن سکتا ہے بلکہ ایمانی اور اخلاقی ترقی کا دروازہ بھی اپنے لیے کھول سکتا ہے. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ بیماری میں کتنے آخرت کے اعتبار سے ثواب اور اجر کے اعتبار سے فائدے ہیں. ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے تو جو کچھ بھول چوک, کوتاہیاں, غلطیاں, بلکہ گناہ اس سے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان گناہوں کی تکلیف دے کر اس کو پاک کرتا ہے تاکہ آخرت کی بڑی تکلیف جہنم سے وہ محفوظ ہو جائے. اسی طرح سے گناہوں کے علاوہ ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس بیماری میں جو تکلیف اس کو ہوتی ہے اس پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے اگر وہ اس پر صبر کرے. تین, نہ صرف یہ کہ اس کو اجر و ثواب ملتا ہے بلکہ بیماریاں ایک انسان کے لیے آخرت میں جنت کے درجات میں ترقی کا ذریعہ بنتی ہے. آج جس مرتبے پر وہ ہے, بیماری کے نتیجے میں وہ ایک اونچے مرتبے پر پہنچتا ہے جو عام دنوں کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے وہ حاصل نہیں کر سکتا تھا. بعض لوگوں کا ایک مقام اللہ کے پاس ہوتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ یہ عمل کے ذریعے سے اس مقام کو نہیں پا سکتے, لہذا اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک کے بعد ایک ان پر تکلیف میں ڈالتا ہے اور وہ صبر کر لیتے ہیں, اللہ سے راضی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام دیتا ہے جس کے واقعی وہ مستحق ہے. تو ایک راستہ عمل کا ہے اور نیکیاں کر کے اونچے مراتب پانا, ایک راستہ یہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تکلیف پر ایک انسان صبر کرے اور وہ مقام پائیں جو بہت سے لوگ نیکیوں سے بھی نہیں پا سکتے ہیں. لہذا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دین کو چھوڑیں, اعمال چھوڑیں, عبادات چھوڑیں, یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک انسان کے لیے نیکیوں کے بہت سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ایک آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے, نہ وہ مسجد نماز کے لیے جا سکتا ہے, نہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہے, اس کا سارا پیسہ بیماری میں جا رہا ہے, وہ زکات بھی نہیں دے رہا ہے, وہ صدقات و خیرات دوسروں کو کیا دے گا, وہ خود محتاج ہو گیا. بعض اوقات ایک انسان کے لیے نیکیوں کے بہت سارے دروازے عملاً مسدود ہو جاتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں, لیکن وہی آدمی جب اپنی اس تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اس صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا بلکہ جنت کے اونچے درجات کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ یہ ہمارا رب ہے کہ جو ایک انسان کو اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے، اونچے درجات اس کے لیے ممکن کرتا ہے، چاہے بہت ساری نیکیاں وہ عملاً نہ کر سکے۔ تو شکر اور صبر یہ دو راستے ہیں جن سے ایک انسان اونچے مراتب پا سکتا ہے۔ آج کے اس درس میں بیماری کے دوسرے پہلو کو ہم دیکھیں گے۔ ایک تو یہ دیکھا ہم نے پچھلے درس میں کہ کیا اجر ثواب اس میں ہے، کفارہ اور اخروی فوائد اس میں کیا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ بیماری کس طرح سے ایک انسان کے لیے روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ ایک ہے بیماری پر اجر و ثواب جو آخرت میں ملے گا، لیکن ایک ہے بیماری کا روحانی، علمی، ایمانی، اخلاقی، فکری فائدہ۔ وہ فائدہ دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کو اجر و ثواب ملے گا، بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ ایک انسان پہلے سے بہتر انسان بنے، اس کے ایمان کی ترقی ہو، اس کی سوچ اعلیٰ ہو جائے، اس کے کردار میں ریکٹیفیکیشن ہو، اصلاح ہو، یہ ایک دوسرا فائدہ ہے جو دنیوی اعتبار سے انسان کو دنیا ہی میں نصیب ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بیماری میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ایک انسان سمجھتا ہے، اور واقعی ایک آدمی عقل مند ہے تو اس کے لیے ہر چیز میں عبرت اور نصیحت اور روحانی ترقی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج اس بھاگ دوڑ کے زمانے میں ہم لوگوں نے سوچنا کم کر دیا ہے، غور و فکر کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ یہ وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنے دل کو اعلیٰ سطح پر لے جا سکتا ہے کہ آدمی ٹھہرے، اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات، اپنے باہر کی دنیا، اپنے اطراف کی مخلوقات، اپنے اطراف ہونے والے واقعات، ان میں غور کر کے نصیحت لے، اور ان میں غور کر کے ایک انسان اپنے ایمان کی ترقی کا راستہ تلاش کرے۔ یہ جو آدمی کر سکتا ہے، اس کی سطح اور اس انسان کی سطح جو دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے اور جس کے پاس کسی چیز کے لیے وقت نہیں بلکہ بعض اوقات فضولیات میں لگا ہوا ہے، اس انسان کی اور اس کی سطح ایک نہیں ہو سکتی ہے۔ قل هل يستوي الأعمى والبصير، کہیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ آسمان میں سورج ہے، آدمی آنکھیں بند کر لیں، سورج کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، لیکن ایک انسان آنکھیں کھلی رکھے اور اپنے اطراف کی چیزوں کو دیکھے، نہ صرف بصارت اس کے پاس ہو بلکہ بصیرت اس کے پاس ہو، ان کی معنویت وہ سمجھ سکتا ہو، ان میں حکمت اللہ کی جانتا ہو، ایسا آدمی بہت ترقی کرتا ہے اور اس کی جینے کی سطح اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ جب آدمی کی جینے کی سطح اونچی ہو جاتی ہے تو بہت ساری وہ چیزیں جن کو لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں اس کے لیے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے ہوائی جہاز میں سفر کیا ہے یا جو پہاڑوں پہ اونچے پہاڑوں پہ گئے ہیں، پہاڑ کے اوپر سے دیکھتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے گھر، اتنے چھوٹے، کیوں؟ اس کی اونچائی کی وجہ سے وہ چیز چھوٹی دکھائی دے رہی ہے۔ بعض اوقات انسان کے جینے کی سطح جب بڑی ہو جاتی ہے، اونچی ہو جاتی ہے، تو بہت ساری بڑی چیزیں جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں اس کو چھوٹی دکھائی دیتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن اگر دنیا ہی میں کھویا رہے آدمی، اللہ کو نہیں جانتا ہو، وہ آخرت سے دور ہو، تو پھر چھوٹا کانٹا چبنا بھی اس کے لیے بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی کے جینے کی سطح اونچی ہو، اس کی پرواز اونچی ہو، وہ اوپر جیتا ہو۔ یہ اتنا اعلیٰ معاملہ ہے کہ جس انسان کو یہ نصیب ہو جائے کہ اپنی سوچ کو اونچی کرے، ایسا انسان دنیا میں اللہ رب العالمین کا قرب اور دنیا کی مصیبتوں کے باوجود خوش رہنا سیکھ سکتا ہے. کوئی آدمی ہے جو دنیا کی مصیبتیں اس کے پر نہیں ہیں، امیر غریب، اچھا برا، گورا کالا، انگریز ہندوستانی، کوئی ہے عرب عجم، صالح طالح، نہیں، ہر آدمی مصیبت میں گھرا ہوا ہے، ہر آدمی پریشان ہے. لیکن ان پریشانیوں میں اگر وہ اپنی سوچ صحیح کر دے، دنیا کو، واقعات کو، زندگی کو دیکھنے کا زاویہ اپنا صحیح کر لے، تو ایسا انسان ان تمام چیزوں کے باوجود صحیح جی سکتا ہے، بلکہ ان میں نکھر کے اعلیٰ ہو جائے گا. جیسے بھٹی میں سونا ڈالا جائے، وہ بھٹی اس کے کچرے کو صاف کر دیتی ہے اور اس کو واقعی سونا بنا دیتی ہے، خالص سونا بناتی ہے. تو بہت سارے لوگ دنیا کی مصیبتیں ان کو جلا کے خاک کر دیتے ہیں، راکھ کر دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دنیا کی مصیبتیں صاف کرتی ہیں، پاک کرتی ہیں. تو کوئی خاک ہوتا ہے اور کوئی پاک ہوتا ہے، یاد رکھیں اس کو. اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ زندگی کے مسائل ہم کو بہتر بنائیں، اعلیٰ انسان بنائیں، ایک اچھا مسلمان بنائیں. آئیے دیکھتے ہیں بیماری کے روحانی فوائد کیا ہے. روحانی کا مطلب یہ نہیں کچھ عملیات میں سکھا رہا ہوں، روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کیا ترقی انسان کو ہوتی ہے. نمبر ایک، عقیدہ توحید کی تجدید. عقیدہ توحید کی تجدید یعنی توحید کا عقیدہ تازہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ میری نئی چلتی ہے دنیا میں. ایک آدمی بیمار تھا، کل تو اچھا تھا، اچانک بیمار کیسے ہو گیا؟ یہ کھایا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا، ٹھیک ہے. لیکن اللہ چاہتا ہے آدمی کو بیمار کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے شفا دیتا ہے. ایک گھر میں ہیں، کئی لوگ ہیں، وبا پھیلی، ایک کو ڈینگی ہو گیا، باقی لوگوں کو نہیں ہوا، مچھر اس علاقے میں ہیں، اسی کو کیوں ہوا؟ اچھا، اس کی وجہ سے بعض اوقات ڈاکٹر بولتا ہے دیکھو ایسا کرو، بچو یوں کرو، منہ کو یوں لگاؤ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات دوسروں کو ہوتا ہے، گھر والوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، جس کو چاہتا ہے بیمار کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محفوظ رکھتا ہے. بیماری انسان کے عقیدے کو صحیح کرتی ہے. ایک مومن بندہ جب بیمار ہوتا ہے وہ یاد رکھتا ہے، ٹھیک ہے وسائل اسباب اس کی اپنی جگہ ہے، لیکن جب تک کہ اللہ نہ چاہے آدمی بیمار نہیں ہو سکتا ہے، اور جب تک اللہ تعالی نہ چاہے آدمی کو شفا نہیں مل سکتی ہے. ایک مومن بندے کا ایمان اس بارے میں تازہ. آپ دیکھیے کتنے لوگ، جب سوائن فلو وغیرہ کا معاملہ چل رہا تھا، ہر آدمی برقعے میں، عورتیں جو بیچاری پتہ نہیں کرتی ہیں، منہ کا چہرے کا کوئی اختلاف نہیں اس میں، سب چہرے کا. کیوں؟ ہو سکتا ہم کو ہو جائے، راستوں میں، بازاروں میں، مال میں. میں نہیں کہتے غلط ہے، لیکن بعض لوگ اتنا گھبراتے ہیں کہ گویا بیماری انہیں کو تلاش کر رہی ہے. لیکن بعض لوگوں کا حال ہے کہ نہیں، اگر اللہ چاہے گا تو بیمار ہوں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوں گے. انسان بیماری میں اگر اس کا ایمان صحیح ہے اور ترقی کرتا ہے. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کیا ہو گیا نا تم کو، ایسا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا بیمار ہو گیا، اللہ چاہے گا شفا دے گا. مومن بندے کا ایمان بیماری میں بھی ترقی کرتا ہے. بیماری بتاتی ہے کہ تیری مرضی نہیں چلتی دنیا میں، تو چاہتا ہے صحت مند ہو، کائنات کا رب تو نہیں ہے، اپنی زندگی کا مالک تو نہیں ہے، اللہ نے تیرے لیے مقدر کیا بیمار ہونا، تو بیمار ہوگا. بیماری انسان کو اپنی عاجزی بتاتی ہے. رب کون ہے کائنات کا؟ اللہ ہے. میں اپنی زندگی کا مالک نہیں ہوں کہ میں چاہوں تو صحت مند. کون چاہتا ہے کہ بیمار ہو؟ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی مولوی صاحب غلطی سے بھی کبھی دعا کی اے اللہ بیمار کر دے ہم سب کو؟ سب پیچھے سے اتنا دھیان بھی نہیں ہوگا لوگوں کا، آمین سب بولیں گے، ثم آمین بعد میں پکڑیں گے. ہاں عالم کو یا کسی کو بھی اگر مان لیجئے جمعہ کے خطبے میں یا عیدین کے خطبے میں بول دے, بیماروں کو شفا کی بجائے بول دے اللہ ہم سب کو بیماری عطا فرما, تو پبلک کیا کہے گی؟ عادت ہو گئی نا, کہیں سے بھی دعا سننے آئے تو پہلے آمین بولنا ہے, بعد میں سوچنا کیا مانگے. کوئی آدمی بولتا ہے نہیں, کوئی آپ بھی نہیں چاہتا بیمار ہو, لیکن پھر ہوتا ہے, پریکاشن بھی سب لیتے ہیں, احتیاط بھی سب کرتے ہیں, لیکن پھر بھی بیمار ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں اللہ کا فیصلہ چلتا ہے, ان کا اپنا نہیں. یہ بتائیے کیا ڈاکٹر لوگ بیمار ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا علاج کرتے ہیں. ڈاکٹر بولتا دیکھو یہ نہیں کھانا, ایسا نہیں کرنا, یوں نہیں کرنا, ایسا کرو گے تو کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ بیمار پڑو گے. اچھا آپ دوا کھانا آپ کا پچھلے ہفتے بند تھا, بیمار تھا, ڈاکٹر بھی بیمار. اگر انسان کے احتیاط میں اور اس کے علاج ہی میں شفا اور نجات ہے بیماری سے, اگر ایسا ہوتا تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر بیمار نہیں ہوتا. بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر بولتا ہے ان کے 6 مہینے رہ گئے ہیں, اور معلوم پڑتا ہے کہ 4 مہینے میں وہی نہیں رہا اور یہ 6 سال تک جیتا رہا. کتنے لوگ ایسے ہیں, ڈاکٹر نے ان کی وارنٹی ختم بتایا تھا لیکن اس کی گارنٹی ختم ہو گئی. تو کیا ہے یہ, دنیا کے ڈاکٹر کیوں بیمار پڑتے ہیں؟ ان کو تو سب کچھ معلوم ہے بیماری سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, وہ کرتے بھی ہیں, لیکن پھر بھی وہ بیمار پڑتے. کیوں؟ کائنات میں فیصلہ اللہ کا چلتا ہے. مومن یہ بات جانتا ہے اور بیماری اس کے اس علم کو مزید یقین میں تبدیل کر دیتی ہے اور اس کے یقین کو مزید تازہ کر دیتی ہے, اس کے ایمان کو, اس کی توحید کو تجدید اس کی کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اے نبی آپ کہیے لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی ہے سوائے اس مصیبت کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. یہ مصیبت آئی کہاں سے آئی؟ اللہ نے نہیں چاہا پھر آئی, اللہ نے چاہا اس پہ مصیبت آئے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور مصیبت مجھ پر آئی ہوا مولانا, نعوذ باللہ, کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ کیا مصیبت ڈالا ہمارے اوپر؟ بہت سارے لوگ مصیبت جب آتی ہے تو کبھی زبان سے تو کبھی خاموشی سے دل میں اللہ کی شکایت کرتے ہیں, کیا اللہ تو نے ایسا کیا, صحیح نہیں کیا. بعض اوقات ماتم میں اور مصیبت کے بڑھ جانے میں عورتیں زبان سے کہتی ہیں اللہ نے اچھا نہیں کیا, نعوذ باللہ. آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, اے نبی آپ کہیے ہم کو تو صرف وہی مصیبت پہنچ سکتی جو اللہ نے ہم پر لکھی ہے. وہ مولانا, وہ ہمارا مولا ہے, وہ ہمارا نگہبان ہے, ہمارا کارساز ہے, ہمارے کاموں کا بنانے والا, ہماری پرورش کرنے والا, ہماری حفاظت کرنے والا ہے. وہ تکلیف بھی ڈالتا ہے تو اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے. وہ مولانا, وہ ہمارا مولا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے, وہ اللہ پر توکل کریں. بیماری انسان کو بتاتی ہے تیرا کوئی رب ہے اور تیری زندگی میں اس کا تصرف ہے. کبھی کبھی انسان چیزوں میں اتنا کھو جاتا ہے اللہ کے فیصلے کو بھول جاتا ہے, میں ایسا کرتا نا یہ نہیں کھاتا, فلانے کی ولی میں نہیں کھاتا نا, ہاں میں نے وہ کھایا اس لیے ایسا ہو گیا. اتنا تعلیلات میں, کاز اینڈ ایفیکٹ میں اتنا کھو جاتا ہے آدمی کہ اللہ کو بھول جاتا ہے. ارے میں نے وہ کھایا نا, مجھ کو ایسا, ہزار لوگ کھائے ان کو کچھ نہیں ہوا, تیرے کو کائے کو ہوا. وہی کھانا فوڈ پوائزنگ, ہزار لوگ کھائے بھائی ان کو کچھ نہیں ہوا, تیرے پیٹ میں کیوں فوڈ پوائزنگ ہوا, وہ تیرے لیے پوائزن کیوں بنا؟ اللہ نے چاہا. سب چیزوں کا آسان جواب ٹھیک ہے, اسباب بھی اپنی جگہ ہیں, اسباب رب نہیں ہے, اسباب کائنات میں فیصلہ نہیں کرتے ہیں. فیصلہ کون کرتا ہے؟ تو یہ چیز انسان کے دل کو کیا دیتی ہے؟ تسکین. ورنہ بعض اوقات کسی اور کو بھی آدمی ذمہ دار بنا کے مجرم بناتا ہے. اللہ نے چاہا ہوا. یہ ایمان کی تجدید بیماری میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. جو بھی مصیبت تم کو پہنچتی ہے چاہے وہ زمین میں ہو یا پھر تمہاری اپنی جانوں میں, تمہارے اطراف تمہارا گھر ٹوٹ گیا, تمہاری دکان ہاں روڈ وائڈنگ میں چلی گئی, یا تمہارے گاڑی چلی گئی, جیب کے پیسے چلے گئے, زمین میں جو چیز آتی ہے, یا تمہاری اپنی جانوں میں بیمار ہو گئے, ٹھوکر لگ گئی, یا کچھ اور غم اور دکھ اور پریشانی تم پر آئی. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, وہ ایک کتاب میں لکھی جا چکی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو دنیا میں ظاہر کریں, تمہاری زندگی میں ظاہر کریں. اس کے ہونے سے پہلے اللہ نے اس کو لکھا ہے, اس کو یہ تکلیف پہنچنی ہے. کیوں ایسا کیا؟ اللہ نے کہا ان ذالک علی اللہ یسیر. ہونے سے پہلے کیسا لکھا اللہ نے؟ اللہ کے لیے آسان ہے. تم ہو کہ تم کو صرف آج دکھتا ہے, پچھلا یاد رہتا ہے, لیکن اگلا معلوم نہیں. اللہ کے لیے مستقبل کا بندھن نہیں ہے. کل کیا ہوگا تم کو معلوم نہیں معلوم, اللہ کو معلوم. بلکہ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ ہوتا تو کیا ہوتا, جو نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ ہوتا تو کیا ہوتا. اللہ نے کیا فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور کئی معبود ہوتے تو اس میں فساد آ جاتا. ہو سکتا ہے ایسا؟ اور معبود اللہ کے سوا ہیں اگر ہوتے تو کیا ہوتا؟ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. تو یہ ہو نہیں سکتا ہے, لیکن اگر ہوتا تو کیا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ نے کہا ان ذلک علی اللہ یسیر, یہ اللہ پہ بہت آسان ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, یہ اللہ نے تم کو اس لیے بتایا ہے کہ جو تم سے فوت ہو گیا, جو کھو گیا, جو نقصان تمہارا ہو گیا, اس پہ تم افسوس کرتے نہ رہ جاؤ, اور جو تم کو اللہ نے دیا ہے اس پر تم فخر نہ کرنے لگ جاؤ, اس پہ اترانے نہ لگو. واللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ تعالیٰ کسی گھمنڈ کے ساتھ چلنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں تصرف کرتا ہے سارے احتیاط کے باوجود بھی. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ڈاکٹر بتا ایک دم ٹھیک ہو گیا, ابھی کیسے اچھے لگ رہے نا سب, بول بہت اچھے لگ رہے ابھی, گھر پہ لے آتے ہیں آدمی مر جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سب طرف سے ہوتا ایک دم ابھی اوکے ہیں, بلکہ پہلے سے بھی اچھے لگ رہے ہیں, اور اچانک موت ہو جاتی ہے. اور آدمی دواخانے میں جاتا ہے, ڈاکٹر بولتا ہے اب بس اوپر والے سے مانگو, ہماری طاقت ختم, لیکن وہ جیتا ہے سالوں سال, شفا مل جاتی ہے اس کو, نا امیدی کے باوجود اللہ بچاتا ہے, اور بے فکری کے بعد اچانک اللہ تعالی اٹھا بھی لیتا ہے, اللہ کا فیصلہ چلتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایک انسان بیماری میں اس چیز کو سوچ کے, اگر واقعی اس کے پاس علم ہے ورنہ وہ اندھا پڑا رہے, اس چیز کو یاد رکھتا ہے بھائی سب ہٹاؤ, اللہ نے چاہا, اللہ نے جو کرنا ہے کیا, اللہ کا فیصلہ چلتا ہے, تو اس کی یہ چیز تازہ ہوتی ہے. بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اور بھی اعتبار سے اس کا ایمان بڑھتا ہے. مثلا ڈاکٹر بول دیا تھا بھائی ابھی مشکل ہے, کوشش کریں گے, اور اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی مشکل ہے, پھر جاتا ہے دواخانے میں, کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر ہوتا اور باہر آ جاتا, اور اس کو ایسا لگتا ہے, ڈاکٹر بولتے ہیں معلوم نہیں کیسا ہوا ہے, معلوم نہیں, ہم نے کوشش کی لیکن ہوپ نہیں تھا لیکن ہو گیا, شکر مانو اوپر والے کا. اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ اور تازہ ہوتا ہے کہ نا امیدی تھی اس کے باوجود اللہ نے بچا لیا. تو بیماری ایک انسان کے لیے اگر اس کے پاس واقعی غور فکر کی صلاحیت ہے تو اس کی توحید کو پختہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ ہوئی پہلی چیز۔ یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 21 اور 22 سے 23 تک ہے۔ نمبر 2، بیماری کا دوسرا فائدہ، رضا بالقضاء کے ذریعے سے اللہ تعالی کی رضا کا حصول، تقدیر پر راضی ہو کے اللہ کو راضی کرنا۔ بیماری میں ایک انسان بستر پر پڑے پڑے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، کیسے؟ اللہ سے راضی ہو کے، تو مجھ سے راضی ہو جا میں تجھ سے راضی رہوں گا۔ کتنا چھوٹا فارمولا ہے، چھوٹا سا فارمولا ہے، تو مجھ سے راضی رہے، تو میری ربوبیت پر راضی ہو جا، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں جو چاہے کروں تیرے ساتھ، تو اس پر راضی ہو جا، میں تیری بندگی سے راضی ہو جاؤں گا۔ تیری بندگی میں کیا ہے؟ عیوب ہیں، لیکن تو اگر میرے فیصلوں پر راضی ہو جائے تو تیری کوتاہیوں کے باوجود میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ بیماری میں تکلیف آتی ہے، وہ پیسیو سٹیٹ ہے، پڑے رہو اور لڑتے رہو، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس حال میں اگر ایک آدمی اپنے دل کو راضی کر لے، بھائی جو بھی اللہ کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، اور برا ہوا تو بھی کیا، اگر کوئی دل میں آ کے، کان میں آ کے شیطان بولے ارے کیا اچھے کے لیے کرتا، تکلیف پہ تکلیف ہو رہی، پہلے کم بیماری تھی بھی بڑھ گئی، کیا اچھے کے لیے کرتا، کیا اچھا دکھ رہا ہے اس میں، شیطان آ کے بولتا ہے۔ ہاں، وہ آس پاس والوں کو سننے نہیں آتا ہے، وہ خالی بیمار کو سننے آتا ہے، اس کے دل میں ڈالتا ہے، کیا اچھا۔ اچھا اس وقت میں سوچا نہیں، نماز پڑھتا، روزے رکھتا، عمرہ بھی کیا میں نے، حج بھی کیا میں نے، تسبیح تلاوت جتنا بھی ہے سب کچھ کرتا ہوں میں، پھر یہ کیا، دل کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ لیکن آدمی کہے ہاں تو کیا، وہ میرا مالک ہے، میرا مالک ہے، زیادہ زیادہ کیا ہوگا، موت آئے گی، اس سے زیادہ کیا ہے، دوسروں کو موت نہیں آتی کیا، سبھی کو تو موت آتی ہے، بیماری دوسروں کو نہیں آتی ہے کیا، آئی تو کیا ہوا، ہاں تکلیف دا، بہت تکلیف دے رہا، دے کتنی تکلیف نہیں دینا چاہیے تھا اللہ نے، ٹھیک ہے وہ میرا مالک ہے، میں اس سے راضی ہوں، میرا بدن سر سے پاؤں تک اس کا ہے، اس کا دیا ہوا، میری زندگی اس کی دی ہوئی ہے، اس نے بہت احسانات میرے اوپر کیے ہیں، ایک تکلیف دے دیا تو کیا ہوتا، نہیں بول سکتا، زوم ایمان اوپر جاتا ہے۔ جب یہ دل میں بات آدمی لاتا ہے اپنے، کوئی بات نہیں، وہ میرا مالک ہے، شیطان بول رہا ہے دے کیا ہے، اللہ تیرے ساتھ تو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا، آدمی کہے اس سے کیا تو کیا ہوا، وہ میرا مالک ہے، ہاں کیا، جا، نہیں بول سکتا۔ یہ ہمت کہاں سے آتی ہے، عقیدے کی پختگی سے، بھئی تکلیف دیا تو کیا ہوا، اللہ کیا مصیبت آ گئی، اللہ تعالی اس پر کیا دے گا، جب دیکھے گا تب جا کے سمجھ میں آئے گا۔ ایک عورت جانتی ہے بچے کی پیدائش میں تکلیف کتنی ہوتی اس کو، لیکن پھر گود میں بچہ آتا نا، کتنی خوش ہوتی، اس تکلیف کے بعد اس کو معلوم ہے اس سے گزر کے ہی یہ ملتا ہے، لہذا وہ تیار کر دیا اپنے آپ کو اس تکلیف کے لیے، کیوں، اس لیے کہ اس تکلیف کے بعد جو ملنے والا ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ بولتی عورتیں بچہ نہیں چاہیے تکلیف کی وجہ سے، نہیں، ان کو معلوم ہے اس سے گزرنا ہی پڑے گا۔ ایک کسان ہے، ہل چلاتا ہے دھوپ میں، ہاں پریشانی میں، تھکتا ہے اتنا، پسینہ بہاتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، کیوں، اس کو معلوم ہے لہلہاتی فصل اس کے بعد آنے والی، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ مشقت برداشت کرنی پڑے گی، اس کے بعد ہی کھیتی میں بہترین فصل آئے گی، جس کو دیکھ کے خوشی ہوگی۔ تکلیف اس زندگی کا بنیادی قاعدہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا ہے، اس کے لیے آنا ہی آنا ہے، تکلیف آنا ہی انسان کو، بھاگ نہیں سکتا ہے، تو جس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں اس سے کمائی کیوں نہ کر لیں، سمجھ رہے ہیں، جس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں اسی کو یوٹیلائز کرو، اور کیسے یوٹیلائز کر سکتا ہے، अब देखिए नदी नाले बहते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, डैम बनाओ, बिजली बनाओ, पानी रुकने वाला तो नहीं है, बहता है, बहने तो इसके बहने से क्या करना है अपने को, बिजली बनाना है, ऊर्जा क्या बोलते हैं उसको, हाँ बिजली, बिजली का पावर बनाओ उससे। तो बहते पानी से, बाद में बोलते हैं ना बहते पानी में हाथ धो लो, हाँ ये सारा जानते हैं, लेकिन जिंदगी के अहम मामलात में, मुसीबतों में, परेशानियों में ये नहीं समझ पाते हैं, कुछ नहीं करना, अल्लाह क्या करना पड़ेगा आजर के लिए, कुछ नहीं, राजी रहे खाली बस, शिकायत मत कर, अल्लाह से राजी रहे मुंह से नहीं। लोग आ रहे हैं बोल रहे हैं क्या बीमार हो गए ना, अच्छे खाते थे, अरे अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, आप दिल में बोला क्या अल्लाह। यहां रिजा कहां होती है, जुबान पे नहीं, रिजा दिल में होती है, आदमी दिल में राजी रहे, अल्लाह जो भी करता है सही करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन इज़म अल जज़ाई मा इज़म अल बला, ये बहुत बड़ी हदीस है, बड़ी जजा बड़ी बला के साथ होती है, मतलब जैसी बला आएगी उतना बला होगा, जैसी बला अल्लाह की तरफ से आएगी उतनी जजा मिलेगी तुझको, उतना बड़ा सवाब मिलेगा तुझको। तो अगर बड़ी बला किसी पर आई है वो अपॉर्चुनिटी है, उसको देखने का एक तरीका क्या है, क्या मुसीबत है कि बड़ी बला मेरे ऊपर आई, दूसरों पे इस पे छोटी, इस पे छोटी, मेरे ऊपर बड़ी, मैंने क्या गलती किया था इसी, ये तेरे लिए अल्लाह की तरफ से मौका है, इसमें सिर्फ तू राजी रहे, कुछ मत कर, कुछ भी उल्टा मत बोल, उल्टा मत सोच, बल्कि याद रख, दिल में ये रख, अल्लाह तूने जिस हाल में भी डाला मैं तुझसे राजी हूं, अल्लाह इसको हटा, हटा बोलना गलत नहीं, लेकिन तू हट मत सीधे रास्ते से, अल्लाह से दुआ मांग लेकिन राजी रह, राजी रह के मुसीबत के हटाने की दुआ गलत नहीं है, नाराज होना गलत है। कहा इन इज़म अल जज़ाई मा इज़म अल बला, बड़ी जजा, अजीम जजा, अजीम बला के साथ होती है। इससे मालूम होता है कि अंबिया का अजर क्यों ज्यादा होता है, एक वजह उसकी ये भी है, कई वजहात हैं, एक वजह ये भी है कि उनका दिल मुसीबतों में रिदा से भरा हुआ होता है, कभी शिकायत नहीं करते हैं। बल्कि आप देखिए यूनुस अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने मछली के पेट में डाल दिया, अब उन्होंने कहा इतने दिन में दावत दिया कौम को, वो नहीं माने इसलिए मैं छोड़ के निकला, और मैं मछली के पेट में आ गया, वो बैठे हुए आराम से, इतने साल की मेहनत करके ये बदला, आदमी सोचता है ना क्या अल्लाह इतना, मैं जुमा तो जुमा, फर्ज नमाजे सब पढ़ता, ताजुद भी पढ़ता और सब कुछ करता, इतना करके ये। यूनुस अलैहि सलाम ने क्या कहा, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंत मिन अज़्ज़ालिमीन, ये बंदा है, क्योंकि अंबिया हाईली इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, आला किस्म की फिक्री सलाहियत, आला किस्म के ज़हनी ऊंचाई उनको नसीब होती है, उन्होंने क्या कहा ला इलाहा इल्ला अंत, पहली बात तो ये कि अल्लाह को छोड़ नहीं सकते हैं, वो माबूद कल भी था मुसीबत डालने से पहले और आज भी है, उसको छोड़ नहीं सकता, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह तेरे सिवा तो कोई इबादत के लायक है नहीं, तो मुसीबत डाले से तुझको छोड़ दूंगा नहीं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, मुसीबत आई तेरे सिवा किसी और को पुकारूंगा नहीं। यही होता है ना आदमी, जब मुसीबत आती है अल्लाह की बजाय फिर बाबा याद आते हैं, अल्लाह की बजाय दरगाह याद आती है, नाड़े धागे नहीं, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह मुसीबत अब भी तो मेरा माबूद था, और बड़ी से बड़ी मुसीबत मछली के पेट में, लेकिन अब भी तू मेरा माबूद है, ला इलाहा इल्ला अंत, सुभानक, अच्छा नहीं किया ना अल्लाह ने, नहीं सुभानक, अल्लाह तू हर ऐब से पाक है, तू जुल्म से पाक है, मेरे साथ जो हो रहा गलत नहीं है, तेरी तरफ से कोई गलत नहीं है, सुभानक क्यों बोल रहे हैं, अल्लाह तू सारे उयूब से पाक है, मैं तुझको इल्जाम नहीं दे सकता कि तूने अच्छा नहीं किया, सुभान तो हर ऐब से पाक है, तू गलती से पाक है, तू धोखा देने से पाक है, तू भूलने से पाक है, तू जुल्म से पाक है, मेरे साथ ये जो मछली के पेट में आ गया, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, तेरी तरफ से कोई मामला गलत नहीं है। इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, फॉल्टी मैं ही जालिम हूं। जालिम कौन है? आप देखिए, एक नबी है, उनकी जहनी कैफियत देखिए, मछली के पेट में है, अंधेरे में है, लेकिन उनके दिल में अंधेरा नहीं है। याद रखिए इस बात को, बाज़ औक़ात आदमी एक अंधेरे कमरे में पड़ा होता है बिस्तर पे, लेकिन उसके दिल में नूरानियत होती है। मछली के पेट में अंधेरे में है, पनादा फिल ज़ुलुमात, अल्लाह ने क्या कहा, अंधेरियों में उन्होंने पुकारा अपने रब को, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक, अल्लाह तू तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, मैं ही जालिमों में से हूं, मैं ही खामखा निकला वहां से, गलती मेरी है। ये मिजाज मोमिन बंदे का हो कि कुछ तो मुझसे गलती हुई होगी, और नहीं भी अगर हुई है तो समझने में गलती हो रही है, क्या क्या हो जाए नहीं मालूम, लेकिन मैं राजी हूं, तेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मेरा होगा, और अगर मेरा नहीं भी है तो मैं तुझको गलत नहीं मानता, कुछ तो खैर इसमें होगी जो तू मुझको देना चाहता है। ये ईमान, इन अज़म अल जज़ा इन अज़म अल बला, बड़ी जजा बड़ी बला पर होती है, जिसको जितनी बड़ी मुसीबत आई है उतना बड़ा सवाब का दरवाजा उसके लिए खुला है। ये तुम्हारे लिए ऑफर है अल्लाह की तरफ से, ले लो, इसको जाया मत करो। नाराज होने से मुसीबत टलती, चलो भाई दूसरा ऑप्शन है, नाराज हो जाओ, हो गए नाराज अल्लाह से, हाँ गई मुसीबत। होता ऐसा नहीं, नाराज होने से मुसीबत जाती तो नहीं, फिर राजी होके सवाब क्यों नहीं लेता है? समझ में आ रही बात कि एक इंसान यानी शिकायत से मुसीबत टलती नहीं है, लेकिन अज्र जाय हो जाता है। मुसीबत पर अल्लाह से नाराज होके मुसीबत हटती नहीं है, लेकिन अज्र सवाब और तरक्की रुक जाती है। लिहाजा आदमी बीमारी में जब अल्लाह से राजी होता है, इसलिए क्या फरमाया, इन अल्लाह ताला इदा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम, अल्लाह ताला जब किसी से महब्बत करता है तो उसे मुसीबत में मुबतला करता है। लीजिए, अल्लाह ताला किस मुसीबत में कब डालता है मुसीबत में, जब किसी से महब्बत करता है। एक तस्कीन दिल में यह भी होती है कि अल्लाह ने मुसीबत डाली है तो शायद अल्लाह को मोहब्बत हो, ये दिल की तस्कीन के लिए भी होता है कि भाई अल्लाह हर एक पे नहीं डालता है, ठीक है मुसीबत डाली है, मुमकिन है अल्लाह ने मोहब्बत से डाली हो, सफाई के लिए तरक्की के लिए, तो ये तस्कीन बन जाती है। फमन रज़िया फलहु रिज़ा, तो जो अल्लाह से राजी रहे अल्लाह भी उससे राजी हो जाता है। وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ, और जो अल्लाह से नाराज हो जाए अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। मुसीबत तो टलती नहीं है, आई हुई मुसीबत है, लेकिन नाराज होके क्या हो जाता है, अजर जाया हो जाता है, अल्लाह नाराज होता है। लेकिन वही आदमी बिस्तर पर पड़ा है, आने जाने वाले हमदर्दी कर रहे हैं, उनकी हमदर्दी से वो अल्लाह की नाराजगी की गिज़ा नहीं लेता। सारों की हमदर्दी देखे, क्या अल्लाह सर हमदर्दी करे, तू कब करेगा, तू कब बताएगा मुसीबत को, तू कर सकता फिर भी नहीं कर रहा, क्यों ऐसा? शिकायत नहीं, बल्कि ए अल्लाह तू हटा, लेकिन मैं राजी हूं, जो भी तूने किया मैं राजी हूं, और चाहता हूं कि तू शिफा दे, लेकिन अगर ना भी दे अल्लाह दिल राजी रखे इसके ऊपर कि अल्लाह ने जो चाह किया वह हमारा रब है, हुआ मौलाद, वो हमारा कारसाज है, कामों का बनाने वाला है। तो ये दूसरी चीज है, ये इमाम तिर्मिज़ी और इब्न माजा ने इसको रिवायत किया, हदीस सही है, हसन दर्जे की है। तो इस हदीस से दूसरी बात मालूम हुई कि बीमारी का दूसरा फायदा ये है कि एक बंदा जब अल्लाह से राजी रहता, और देखिए मुसीबत पे राजी हो जाना अल्लाह से ये मुसीबत की इंटेंसिटी को खत्म कर देता है। डॉक्टर से भी आप पूछिए, वो भी यही बताएगा, जैसी आदमी उसको डॉक्टर ने बताया आपको ये बीमारी है, नहीं नहीं ऐसा कैसा हो सकता, मेरे साथ नहीं हो सकता, ये मैं क्या हो गया। तेरे इनकार करने से, लड़ने से तेरा दुख बढ़ेगा। हां हो गया ऐसा। जैसी वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसके सर से पूरे काले बादल हट जाते हैं। मुसीबत को कबूल कर लेने से उससे निमटने की ताकत पैदा हो जाती है, आदमी का दिल हल्का हो जाता है। अब आगे के स्टेज में सोचता आदमी, वरना पीछे ही कैसा क्या हुआ, नहीं होना चाहिए था क्या, कुछ होने वाला नहीं, उल्टा पैडल मारने से गाड़ी आगे जाती नहीं, साइकिल जाती आगे नहीं जाती है। तो मत करे ऐसा, अब आगे का सोच, हो गया ऐसा, उसको अपने लिए अजर का जरिया बना, सोच इसमें कुछ भलाई होगी, अल्लाह मैं राजी हूं। ये जो आदमी कर सकता है, ये हौसले वाला है, हिम्मत वाला आदमी है। और मालूम नहीं अल्लाह ताला इस पर क्या अजर दे, हो सकता है अल्लाह ताला पूरे गुनाह माफ करके, दर्जात ऊंचे करके उसको जन्नत और फिरदौस दे दे, इतना खुश हो जाए अल्लाह से। एक फाहिशा औरत है, वो फाहिशा औरत, उसने एक कुत्ते को पानी पिलाया, उस पर अल्लाह ने उसकी मगफिरत कर दी, जानिया औरत। एक मोमिन बंदा, मुसलमान, नमाजी, जिक्र तिलावत करने वाला, अल्लाह से राजी हो जाए इस मुसीबत के ऊपर, वो दूसरे की मुसीबत दूर करने पे उसके ये सवाब है, इतनी बड़ी मुसीबत खुद बर्दाश्त कर रहा है और अल्लाह से राजी है, क्या अल्लाह उसकी मगफिरत नहीं करेगा, क्या देगा अल्लाह उसको। इसलिए क्या कहा, इन्ना इज़्ज़मल जज़ा इमा इज़्ज़मिल बला, बड़ी जजा बड़ी बला के साथ होगी, जैसी बला वैसी जजा। इसलिए बड़ी मुसीबत आए सोचना चाहिए आप गड़बड़ नहीं करना, पहले अपने आप को प्रिपेयर करना उसके लिए, आ गई अल्लाह हटा, लेकिन राजी हूं मैं, नाराज नहीं। जैसी राजी हो गया, अजर पक्का हो गया, फरिश्ते राजी, फिर अब उससे क्या देगा अल्लाह इसको नहीं मालूम, पहले राजी होना, ये दूसरी चीज याद रखें। नंबर तीन, बीमारी में आदमी का घमंड टूटता है। बीमार को आप देखिए बिस्तर पे, बड़ी कंपनी का मालिक है ये, मल्टी मिलियनेयर है ये, लेकिन क्या है, अब उठा के ले जा रहे उसको, पड़ा है बिस्तर के ऊपर, डॉक्टर साहब यहां बहुत दुख रहा है, हाँ ठीक है आते हैं हम लोग। बीमारी में आदमी बिस्तर पे पड़ता है, बुखार में कांपता है, परेशान होता है, और कभी कभी इतना ऑपरेशन वगैरह हो गया, पेशाब पाखाना भी दूसरे साफ करते हैं, पेशाब पाखाना भी कभी डॉक्टर कभी घर वाले, उनको सफाई करनी पड़ती है, चलने के लिए चलने की भी ताकत नहीं रहती, उसको हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है। वही आदमी जो टक 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 वो आए तो सब बेदार हो जाना, अब क्या है, आहिस्ता से पाँव रखो, चलने में भी उसको दो लोगों का सहारा लेके चलना पड़ता है, बात करने की ताकत नहीं रहती है, करवट नहीं बदल सकता है, उसको करवट बदलनी पड़ती है, पड़ा रहता है, तकलीफ होती रहती, कराता है, कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब, बहुत तकलीफ है, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, डरो मत, हिम्मत रखो। आप देखिए बीमार के, बीमार अपनी असल हैसियत को जान देता है, तू कमजोर है, तू कमजोर है, तू आजीज है, उसको अपनी असल हैसियत मालूम होती है, तो अल्लाह से जीत नहीं सकता है, तो अल्लाह से भाग नहीं सकता है, तू भाग नहीं सकता है, तो कमजोर ही है। وخلق الانسان ضعيفا, अल्लाह ने क्या कहा, इंसान कमजोर पैदा किया गया है, तू कमजोर है, तेरे पास पैसा आ गया, तेरे पास थोड़ी सी सेहत आ गई, तेरे पास हां खादिम आ गए, तेरे पास दुनिया की चीजें आ गई, तो क्या समझता है तू ताकतवर है, नहीं, सो जा, बीमार, तू कमजोर है, तुझको जब चाहे हम कमजोर कर सकते हैं। बुढ़ापा देखिए, बुढ़ापे में आदमी बीमार हो जाता है, बुढ़ापा खुद एक बीमारी है, आदमी को अपनी आजिजी का एहसास होता है, क्या जवानी थी, क्या सेहत थी, और आज मैं बूढ़ा हूं, इतनी सारी बीमारियां हैं, उसको अपनी आजिजी का एहसास होता है, तू कमजोर है, तेरी आंखें तेरा साथ छोड़ दी, तेरे कान तेरा साथ छोड़ दिए, तेरी जुबान लड़खड़ाती है, हलक सूखता है, दांत कब के फरार हो गए, छोड़ दिए तेरा साथ, हाथ कांपता है, चलने के लिए पांव एक से दूसरी फ्लोर अगर मालूम पड़ गया पहली फ्लोर पे नहीं दूसरे फ्लोर पे है तो ऐसा लगता है जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा। एक फ्लोर बढ़ना भी कितनी बड़ी मुसीबत हो जाता है। जवानी में कोई मसला नहीं था, अब बीमारियां, बुढ़ापा, तकलीफ, कमजोरी, इंसान को लगता कमजोर है, उसको मालूम पड़ता है कि मैं आजिज हूं, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं कमजोर ही हूं। बीमारी इंसान को उसकी असल हैसियत से मुतारफ कराती है, तू कमजोर है, तू कमजोर है, उसके तकब्बुर को तोड़ती है। तकब्बुर को तोड़ना अच्छी चीज है, तकब्बुर का नहीं टूटना अच्छी चीज नहीं है। फिर आदमी कहता अल्लाह तकलीफ हटा दे, आम दिनों में नहीं, आम दिनों में कैसा था, मैं अगर चाहूं तो ये कर दूंगा, तुमको जॉब से निकाल दूंगा, मैं चाहूं तो ऐसा हो जाएगा, मैं चाहूं तो तुम्हारी नाक में दम कर दूंगा, मैं चाहूं तो करोड़ भी नहीं ले सकता। बीमारी में क्या है, तेरी चाहत क्या है, चल रही है नहीं ना, हाँ तू कमजोर है। बीमारी इंसान को बताती है तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तू कमजोर है। उसका घमंड तोड़ती, घमंड का टूटना अच्छी चीज है। कितने लोग बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद जब सेहत पाते हैं अच्छे इंसान बनते हैं, क्यों, इसलिए कि उनको समझ में आता है भाई अपने आप में कुछ भी नहीं है, उसका घमंड टूट जाता है और ये बहुत बड़ी नेमत है। क्यों, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी कल्बिही मिसकाल दर्रतिन मिन किब्र, वो आदमी हरगिज हरगिज जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर हो, जर्रा बराबर भी घमंड उसके दिल में हो, जन्नत में नहीं जाएगा। मुसीबत है, एक आदमी को सब कुछ दिल का मिलता रहे घमंड आ जाता है, पैसा खूब, सेहत एकदम जबरदस्त, खूबसूरती एकदम अच्छी, सब हाथ में जैसे चाहता दुनिया चल रही है, लेकिन जब बीमार होता है तब समझ में आता है कि नहीं मेरी नहीं चलती है, मैं आजिज हूं, मैं कमजोर हूं, मैं मोहताज हूं। ये रियलाइजेशन, ये एहसास उसको अपनी आजिजी अल्लाह के मुकाबले में याद दिलाता है, देख आज तेरा ये हाल है, कल को मौत आएगी तेरे को, कैसा होगा तेरा, बिस्तर पे पड़ा है, कल को कब्र में पड़ा रहेगा, क्या होगा तेरा। उसको अपनी कमजोरी का एहसास होता है, अल्लाह को पुकारता है, उसका तकब्बुर टूटता है, उसका तकब्बुर टूटता है। मखलूक के मुकाबले में भी वही जॉब उसके पास करने वाले डांट डबाट एकदम उसको ये करता था, वही फूल लेके आते उसके पास और साहब कैसे, अच्छा कैसा बोलता, थोड़ा दुआ करो मेरे लिए, करे साहब बहुत दुआ कर रहे तुम्हारे लिए, जितने लोग हैं उनसे कैसा हो जाता है एकदम नरम, अकड़ टूट जाती इंसान की, अकड़ टूटना अच्छा है, नहीं टूटना अच्छा नहीं है। तकब्बुर इंसान को जहन्नम में ले जाएगा, तकब्बुर जन्नत में जाने से रुकावट है, जन्नत में जाने में बहुत बड़ी रुकावट है। आपने कहा नहीं जाएगा जन्नत में जिसके दिल में राय जर्रा बराबर भी तकब्बुर हो। साहब ने कहा قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا, अल्लाह के रसूल आदमी तो पसंद करता है ना कि उसके कपड़े अच्छे हों, उसके जूते अच्छे हों, तो क्या है तकब्बुर है, नहीं कहा इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है और जमाल यानी जीनत को खूबसूरती को पसंद करता है। तो तकब्बुर क्या है, कहा अल-किब्रु बतरुल हक व गमतुन नास, अल-किब्रु बतरुल हक व गमतुन नास, तकब्बुर यह है कि इंसान हक बात नहीं माने और लोगों को हकीर समझे। बीमारी में क्या होता है, डॉक्टर बोलता है ये करना पड़ेगा ये नहीं करना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर साहब लेकिन वकीन कुछ नहीं, अच्छा हो रहा है ना, हाँ होना है डॉक्टर साहब, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करो, अपना दिमाग मत चलाओ, हाँ साहब कितना भी बड़ा हो डॉक्टर के सामने चलती है उसकी नहीं चलती, डॉक्टर जैसा बोलता है ऐसा करना पड़ता है। रिश्तेदार लड़े तो बोलते डॉक्टर है ना उनको समझता ज्यादा, काय को उज्जत कर रहे, मेरे को जल्दी अच्छा होना है, तुम्हारी बात सुनो क्या उनकी सुनो, जैसा डॉक्टर बोलता है ऐसा करो, डॉक्टर साहब जल्दी करो जो भी करना है तुमको, जो बोलता है मान लेता है, अड़ियलपना खत्म हो जाता है, लोगों के एतबार से तवाज़ो पैदा होती है, घमंड नहीं रहता है, बीमारी के अंदर आदमी आजिज हो जाता है, उसको अपनी कमजोरी का एहसास होता है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो तीसरा फायदा यह है कि आदमी का घमंड टूटता है। नंबर चार, चौथा फायदा, अहलो अयाल और दोस्तों की कदर होती है। आदमी जब बीमार होता है, घर वाली खिदमत करते हैं, बीवी की कदर याद आती है। हाँ, अगर आदमी है तो बीवी है तो शोहर की कदर आती है, कैसा खिदमत कर रहा, जा रहा, जाग रहा, दवा करने में बैठा है, बैठे बैठे सो रहा है कहीं भी, हाँ सो रहा है, आके फौरन डॉक्टर बुलाया, मिल रहा है दवाई, दौड़ा दौड़ा जाके दवाई लेकर आ रहा है, पड़ा हुआ देखता है, बीवी देखती है कि कैसा मेरी, मेरे लिए भागदौड़, मेरे लिए कुर्बानी, नींद त्याग करना, काम धंधे उल्टे पुल्टे हो गए पूरे, लेकिन बराबर वफादारी के साथ बीवी खिदमत कर रही शौहर की, या शौहर खिदमत कर रहा बीवी की, या माँ बाप है तो औलाद, औलाद है तो माँ बाप, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, माँ बाप दौड़े दौड़े उसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, यहां वहां से पैसे जुटा रहे हैं, उसको कदर आती है, मेरे अपने हैं, ये मेरे हैं, मेरे लिए कितना कुर्बानी दे रहे हैं, एहसास होता है कि दोस्त अहबाब हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं, उसको एहसास, देखो ये मेरे लिए कितना किया है, मैंने इनकी कदर नहीं किया, इनसे बदतमीजी की मैंने, औलाद को मैंने ऐसा किया, कभी माँ बाप को एहसास होता है, कभी औलाद को एहसास होता है मैंने माँ बाप की कभी खिदमत नहीं की, आज ये मेरे लिए बूढ़े होने के बावजूद भी हॉस्पिटल में रात रात भर मेरा बाप जाग रहा है, छोटा बोरिया बिछा के, कपड़ा बिछा के वहीं सो रहा है कोने के अंदर हॉस्पिटल में, उसको एहसास होता है। अपनों का और साथ देने वालों का, खिदमत करने वालों का उसको एहसास होता है, उसको अहमियत मालूम होती है, रिश्तेदारी कितनी अहम है, दोस्ती कितनी अहम, होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है। आम दिनों में आदमी अपने अंदर जीता है, जब बीमार होता है तब एहसास होता है कि मेरे बाहर भी दुनिया है, मेरे अलावा भी लोग हैं जिन पे मुझको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, मेरे अलावा भी लोग हैं जो मेरी फिक्र करते हैं और मुझे भी उनकी फिक्र करना चाहिए, उनकी अहमियत मालूम होती है। कभी कभी साथ में बैठने वाले हिम्मत दिलाते हैं, अरे हो जाएंगे अच्छे, घबराओ मत, तुमने बोले बहुत अच्छा लगा मुझको, तुम्हारे हौसला दिलाने से मुझको हौसला मिला, अगर कोई ना हो, अकेला पड़ा है दवाखाने के अंदर, क्या हाल होगा उसको बताइए, कितने पेशेंट हैं ऐसे जिनका पूछने वाला कोई नहीं, जिया जिया मरा मरा, कोई पूछने वाला नहीं, कई लोग ऐसे पड़े रहते हैं, उसी तरह से मर भी जाते हैं, कोई उनका वारिस भी नहीं होता है, मुसलमानों में से किसी को या गैर मुस्लिमों में से किसी को बोलते आओ भाई तुम्हारा बॉडी लेके जाओ, हमको नहीं मालूम कौन है, ऐसे भी लोग होते हैं, क्या हाल होता होगा उनका सोचिए, जिंदगी के आखिरी अय्याम में इंसान तन्हा पड़ा हो, कोई पूछने वाला ना हो। बीमारी इंसान को याद दिलाती है कि मेरे अतराफ जितने लोग हैं वो कितने कीमती हैं, उनको मुझको उनकी कदर करना चाहिए। बीमारी अहबाब की कदर का जरिया बन जाती है, अगर वाकई समझदार है तो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है वजबत महब्बती लिल मुतहाबीन फी वल मुतजालिसीन फी वल मुतबादिरीन फी वल मुतजाविरीन फी। इमाम अहमद, तबरानी, हाकिम और बैहकी ने शुबुल ईमान में इसको रिवायत किया और हदीस सही है। क्या फरमाया, मेरी मोहब्बत लाजिम हो गई, यकीनी हो गई कि इन लोगों को मेरी मोहब्बत मिलेगी। किनको? नंबर एक, लिल मुतहाबीन फी, मेरी खातिर एक दूसरे से आपस में मोहब्बत करने वालों के लिए। दो, वल मुतजालिसीन फी, मेरी खातिर आपस में एक दूसरे के साथ उठने बैठने वालों के लिए। वल मुतबादिरीन फी, मेरी खातिर एक दूसरे को तोहफे, तहाइफ, हदिया और एक दूसरे पर खर्च करने वाले। वल मुतजाविरीन फी, और मेरी खातिर एक दूसरे की जियारत करने वाले, मेरी खातिर एक दूसरे से मिलने वाले। ये अगरचे बीमार के लिए भी खैर का पहलू इसमें है, लेकिन जो बीमार नहीं है उसके लिए भी सवाब का रास्ता खुल जाता है। अगर कोई बीमारी नहीं होगा तो इयादत किसी करेंगे भाई, इयादत, फिर उसके रिश्तेदार उस पर दवाखाने में खर्च करते हैं, उसके रिश्तेदार उसके लिए भागदौड़ करते हैं, उसके साथ हमदर्दी करते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, उससे मोहब्बत का सुलूक करते हैं, वो भी सवाब के हकदार होते हैं। इस एतबार से बीमारी आपसी रिश्तों को भी मजबूत करने का जरिया बनती है, बीमार के लिए भी और उसकी खिदमत करने वाले भी, आपस में भी इनके अंदर ताल्लुक बनता है। सवाब के हकदार दोनों होते हैं, ये सब्र करके वो खिदमत करके। तो बीमारी रिश्ते नाते दोस्त अहबाब इनकी कदर कराती है। शोबा कहते हैं खरज अब्दुल्लाह बिन मसूद अला अस्हाबिही, अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने दोस्त या साथी अहबाब उनके पास आए, घर से बाहर निकले, देखा बाहर उनके अपने दोस्त अहबाब हैं, कहा अंतुम जला हुज्नी, कहा तुम मेरे गम का इलाज हो। दोस्तों से क्या कहा, तुम मेरे गम को दूर करने वाले हो। ये दोस्त की अहमियत होती है जिंदगी में कि एक इंसान जब परेशान हो बीमार हो उसके दोस्त अहबाब रिश्तेदार वगैरह उसको हिम्मत देते हैं, उसके साथ अच्छा नरमी का सुलूक करते हैं, उसके साथ रहम का सुलूक करते हैं, उसके दुख में उसके काम आते हैं, उस आदमी को सुकून मिलता है। वरना अगर कोई नहीं हो उसके लिए ऐसा, आदमी टूट जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको हिम्मत बंधाने से हिम्मत बंध जाती है, ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में ना हो ऐसे लोग टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, जहनी तौर पर ब्रेक हो जाते हैं। लिहाजा कहा कि तुम मेरे गम का इलाज हो। इब्न अबी दुनिया ने अल इख्वान में इसको जिक्र किया है। कयामत के दिन जहन्नमी क्या कहेंगे, ये खुद एक अजाब है दुनिया का कि उसके कोई हमदर्द ही ना हो दुनिया में, एक इंसान के लिए दुनिया में कितनी बड़ी मुसीबत है। कहा फमा लना मिन शाफिईन वला सदीकिन हमीम, जहन्नमी क्या कहेंगे, हमारी तो आज कोई सिफारिश करने वाला नहीं। फमा लना मिन शाफिईन वला सदीकिन हमीम, और कोई हमदर्दी करने वाला दोस्त भी नहीं, कोई हमदर्दी करने वाला दोस्त नहीं है। तो परेशानियां रिश्तों को मजबूत करती हैं, परेशानियां खासतौर से बीमारी एक इंसान को एहसास दिलाती है कि जिंदगी में दोस्त अहबाब रिश्तेदार इनकी क्या अहमियत है, और इसके जरिए से ताल्लुकात मोहब्बतें ठीक ठाक हो जाती हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा दुश्मन है, दुश्मनी थी उससे, अब ये बीमार पड़ गया, अब आया मिलने के लिए बैठा, भाई कुछ गलती हो गई नहीं तो माफ कर देना, मेरे को मालूम पड़ा आप बीमार हो, मैं आया और जो भी अपना है भाई खत्म कर दो उसको, दुश्मनी जो भी अपनी भूल जाओ, तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, हमको भी खुशी होगी। दुश्मन था, दुश्मनियां क्या हो जाती है बाज़ोकात दोस्ती में तब्दील हो जाती है। ये भी हाथ पकड़ के बोलता है नहीं भाई जो हो गया अभी छोड़ दो ना, अभी काहे को उसको उसके ऊपर क्यों सोचते हो गया हो गया, अब हम ठीक से रहेंगे, दुश्मनी खत्म, ठीक है तुमने बोल दिया ना, मैं भी छोड़ दिया। बाज़ोकात ऐसा भी होता है कि कई बुरे ताल्लुकात भी अच्छे हो जाते हैं, ये एक खैर का जरिया भी बनता है ताल्लुकात के उस्तवार करने का। नंबर पांच, दूसरों की तकलीफ का एहसास। जब तक आदमी के पेट में नहीं दर्द होता है उसको दूसरों के पेट का दर्द मालूम पड़ता नहीं। बीमारी इंसान को दूसरों की तकलीफ का एहसास दिलाती है, दूसरों की परेशानी दूसरों की बीमारी उसको एहसास होता है कि दुनिया में जितने लोग बीमार हैं उनको भी इससे गुजरना पड़ता है। जब इसको बुखार होता है, जिसको तकलीफ होती है उसको मालूम पड़ता है कि वाकई बीमारी क्या है, कभी तकलीफ उसको नहीं हुई वो दूसरों का गम नहीं समझ सकता है। वाकई जो आदमी गम से तकलीफ से गुजरा है उसको समझ में आता है गम और दुख क्या है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग जिंदगी में बड़ी तकलीफें उठा के आगे आते हैं, उनकी जिंदगी में भलाई होती है। क्यों? इसलिए कि वो नीचे से ऊपर आए हैं, उन्होंने दुख देखा है, उन्होंने तकलीफ देखी, उन्होंने भूख देखी, उन्होंने महरूमी देखी है। जब वो किसी महरूम को देखते हैं उनको वाकई मालूम होता है कि ये किससे गुजर रहा होगा, वो उसके काम आते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने उस दुख को बर्दाश्त किया है। खुद आदमी बचपन में जब महरूमी बर्दाश्त की, खिलौने नहीं थे, खाने को मिठाई नहीं मिलती थी, पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिलती थी, सोचता मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं दूंगा मैं, सोचता ना। हाँ क्यों? बच्चों के अंदर वो चीज देखता है, उनकी तलब देखता है, उनकी चाह देखता है, उसको अपना बचपन याद आता है, मैंने महरूमी कैसी बर्दाश्त की। इसको भी वही दुख हो रहा होगा, बेटा लाएंगे करेंगे दूंगा ये ले तेरे लिए। क्यों? वो उसको दुख जानता है, महरूमी उसको मालूम है, वो नहीं चाहता कि दूसरे उस तकलीफ से गुजरे। इसी तरह से एक आदमी जब उस मुसीबत से, बीमारी से गुजरता है, तो जब दूसरों को देखता है बीमार है, परेशान है, उसके दिल में उसके लिए हमदर्दी होती है, उनका एहसास ये खुद अपने दिल में महसूस करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसलुल मुमिनीन फी तवादिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसद, कहा कि ईमान वालों की मिसाल इनकी आपसी मोहब्बत में, इनके आपस में एक दूसरे पर रहम करने के एतबार से, इनके आपस में एक दूसरे से शफकत का सलूक करने के एतबार से ऐसी है, मसलुल जसद, जैसे ये एक जिस्म हो, मुसलमान क्या हो, एक जिस्म हो। इदा इश्तका मिन्हु उधुन तदा लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल हुम्मा, कि जब उसके किसी एक, इदा इश्तका मिन्हु उधुन, किसी एक हिस्से में जिस्म के अगर जख्म हो जाता है, कोई बीमारी होती है, तो उसका सारा जिस्म बुखार और नींद न मिलने की वजह से परेशान हो जाता है। यानी मालूम हुआ इस हदीस से क्या मिसाल दी, आप देखिए एक आदमी उसके पेट में कुछ जख्म है, पांव में जख्म है, तो क्या हो जाता है, पूरा जिस्म में बुखार होता है। प्रॉब्लम एक हिस्से में है, लेकिन इस एक हिस्से की वजह से उस आदमी को नींद आती है, आंखें नहीं सोती है, आदमी नहीं सो पाता है, और पूरा जिस्म बुखार में मुबतला हो जाता है। क्यों? इसलिए कि वो मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। याद दिलाता है, उम्मत का एक हिस्सा है एक शख्स, उम्मत को ऐसा होना चाहिए, अगर वो परेशान है, मुसीबत में है, और दूसरे उसको देख रहे हैं उसकी तकलीफ को, उनको भी तकलीफ होना चाहिए। बीमारी में ये चीज जागती है। रोजे में आप देखिए, रोजा मसलन आदमी जब रोजा रखता है तो भूख प्यास से गुजरता है। एक मालदार आदमी भी जिसके पास खाने के लिए दस्तरखान पे 500 खाने रहते हैं, रमजान में क्या करता है, रोजा रहता है, उसको एहसास होता है भूख किसको बोलते हैं, वो भूख से गुजरता है, फिर किसी भूखे को देखता है, उसको मालूम है इसको क्या तकलीफ हो रही होगी। अल्लाह ताला गुजारता है इस तरह से। बाज औकात बीमार जब आदमी होता है, उसको एहसास होता है कि बीमार कैसे होते होंगे, उनको कितनी तकलीफ होती होगी, मैं चाह रहा हूं जल्दी से अच्छा हो जाऊं, अगर दवा मुझको मिलती है अल्लाह के फजल करम से मैं अच्छा हो जाता हूं, वो लोग जिनके पास दवा नहीं, वो लोग कितनी तकलीफ उठाते होंगे। जो लोग अच्छा इलाज नहीं कर पा रहे हैं, कितनी तकलीफ होती होगी उनको, उसके दिल में उनकी हमदर्दी पैदा होती है, मेरे बस में जो है मैं वो करूंगा ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो। आदमी जो कुछ कर सकता है करता है। तो दूसरों की तकलीफ का एहसास आदमी को कब होता है, जब आदमी बीमारी की तकलीफ से खुद गुजरता है। मां बाप की तकलीफ जवान को समझ में नहीं आती, कब आती समझ में, बुढ़ापे में, बाप खास रहा है, बाप हाँ शोर शराबा कर रहा है, तकलीफ से ये हो रहा है, रात में जाग रहा है, उठ के बर्तन गिरा रहा है, क्या है, कोने में पड़ के सोते भी नहीं, उसको नहीं मालूम है कि बुढ़ापे में सरदर्द क्या होता है। बुढ़ापे में खांसी जब आती है रात में, तो आदमी खांसता ही रहता है, उसका क्या मतलब है, बुखार आता है, जिस्म कमजोर होता है, इतना अच्छा सेट लाया था मैंने ग्लास का, कब दिया, गिरा के फोड़ दिया, एक ग्लास सही से पकड़ नहीं सकते। तू जब बुखार और बीमार और बुढ़ापे में पहुंचेगा, तब तुझको समझेगा कि हाथ कांपना किसको बोलते हैं, कमजोरी किसको बोलते हैं, नहीं गुजरा है उससे, नहीं मालूम उसको, लेकिन जब वो बुढ़ापे में पहुंचता है तब उसको याद आता है, हाँ मेरा बाप, मेरी माँ, हाँ मेरे घर वाले, इनको भी ये तकलीफ होती थी, आप समझा मुझको क्या है, लेकिन देर हो गई है, क्या हो गया, वक्त निकल गया। तो बीमारी में अल्लाह ताला जब हमको भी बीमार करता है, ताकि समझ बीमारी किसको बोलते हैं। तो जवान होके तेरा ये हाल है, इतना कमजोर हो गया, हिलने नहीं आ रहा है, ठंड से कांप रहा है और कराह रहा है, करवटे बदलना भी मुश्किल हो गया है, सोच जो जवानी में नहीं बुढ़ापे में है उनको कितनी तकलीफ होती होगी, तो कमजोर ऑलरेडी है, तेरा जवान होके एक दिन की बीमारी भी हाल हो गया, वो सालों साल बीमार है बेचारे, उम्र दराज है, उनकी कमजोरी अलग और बीमारी अलग, उनको कितनी तकलीफ होती होगी, उनका दुख समझ में आता है। शर्त यह कि आदमी गौर करे। हमारे पास टाइम नहीं गौर करने के लिए। हमारा सबसे बड़ा मसला इस दौर का यह है कि हम गौर और फिक्र करने की सलाहियत खो चुके हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। हमारे पास टाइम नहीं है। हम जिंदगी की वो लज्जतें जो इंसान को फिक्री एतबार से आला बनाती हम छोड़ चुके हैं। हम इतने तेज हो गए हैं बटन दबा के हम सब करना चाह रहे हैं। हम मशीन बन चुके हैं, मशीनों के बीच में जीते जीते हैं। हम मशीन बन चुके हैं। इससे अपने आप को बचाना जरूरी है। हमको इंसान बनना चाहिए और इंसान से बढ़ के हमको एक अच्छा मुसलमान बनना चाहिए। सोचें अपनी जिंदगी से सबक लें, अपने अतराफ से गौर फिक्र करके रूहानी गिजा लें, वरना आदमी इसी तरह से लकड़ी का टुकड़ा बन के मर जाएगा, पत्थर बन के मर जाएगा। इससे पहले अपने को बचाने की जरूरत है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला कहते हैं, देखिए एक मिसाल इससे हमको मिलती है। कहते अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش। एक आदमी रास्ते से जा रहा था, बहुत प्यास लगी उसको। فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج। उसको रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया, वो कुएं में उतरा, पानी पिया और वापस आया। पहले जमाने में, आज भी गांव में कुएं होते हैं, उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती हैं। कुएं में उतरा, पानी पिया, प्यास बुझ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर आया तो देखा, फइदा कल्बुन यलहथ। जब कुएं से बाहर आया, देखा कि कुएं के बाहर एक कुत्ता है, यलहथ जुबान कुत्ते की प्यास की वजह से बाहर निकली हुई है। याकुलु सरा मिनल आतश। पानी तो नहीं है, कीचड़ कुएं के अतराफ में है, कीचड़ में ही प्यास की वजह से अपनी जुबान चला रहा है। فقال الرجل, अब सोचिए, सुनिए इसको। فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي। उसने दिल में सोचा, इस कुत्ते को भी वही तकलीफ हो रही होगी ना जो मुझको थोड़ी देर पहले हो रही थी। इस कुत्ते को भी प्यास की वजह से वही तकलीफ हो रही होगी जो थोड़ी देर पहले प्यास की वजह से मुझको हो रही थी। فنزل البئر। अब की बार वो किसके लिए उतरा? देखिए, पहचान का था वो, और कैसे, क्या खैरियत है तुम्हारी? नहीं, अजनबी कुत्ता, न जान न पहचान। अच्छा, वो कोई इसका फोटो निकाल के वो फेसबुक पे डालने वाला था कुत्ता? कोई देख रहा है? पूरा मजमा जमा देखेंगे, क्या करते हम देख रहे, तुमको हार लेके तैयार? नहीं, कोई देख नहीं रहा उसको। सिर्फ वो एहसास दिल के अंदर, क्योंकि वो खुद उस तकलीफ से गुजरा है। उसने कहा कि इसको भी वही तकलीफ हो रही होगी जो मुझको तकलीफ हो रही थी। वापस से कुएं में गया। فنزل البئر فملا خفه। अब मसला ये है कि नीचे जाके लेके तो मैं पी लिया, अब इसको लाना है। इसको लेके तो नहीं जा सकते, काटा वाटा तो कुत्ता है, वो जान पहचान का तो है नहीं, उसकी हमदर्दी मैं कर रहा हूं उसको क्या समझेगा? पकड़ के ले जा रहा है डुबोने के लिए, समझ के काटा तो मैं भी जाऊंगा सीधा अंदर, और इंजेक्शन वाले तो है नहीं उस जमाने में कोई। तो उसने क्या किया, गया, लेकिन उसने दिमाग चलाया, अकल चलाई। उसने क्या किया, अपना मोजा जो है चमड़े का, उसके पास कोई बर्तन लेके घूम रहा था, उसने क्या किया, अपना खुद का मोजा, पाक मोजा उसने निकाला और उसमें पानी भरा। فنزل البئر فملأ خفه ثم امسكه بفيه। अब ऊपर आना है सीढ़ी से, हाथ में पकड़ के तो नहीं ला सकता है, दांतों में उसने पकड़ा उसको, मोजे को कैसा पकड़ा, चमड़े के मोजे में पानी गिरता नहीं है, दांत में पकड़ा और पकड़ के ऊपर आया। ثم امسكه بفيه فسقى الكلب। और ऊपर आके अपने मोजे में उस कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फशकर अल्लाह लहु, अल्लाह ने उसकी ये नेकी उसको बहुत सराहा, अल्लाह को बहुत पसंद आई ये नेकी। फगफर लहु, अल्लाह ने उसकी मगफिरत कर दी है। कुत्ता, एक जानवर, वो थैंक यू भी नहीं बोला, उसका नंबर भी नहीं लिया, आपका नंबर दो कभी कुछ रहा तो मैं आपके काम आऊंगा, मेरा नंबर लो, नहीं। इंसान दुनिया में एहसान करता है बनिए की तरह, ये हमारी मुसीबत है ना। आज अपन उसके काम आएंगे, वो अपने कल काम आएगा, ये बनिया है, गिव एंड टेक। उसने क्या किया, यकतरफा तौर पर, बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर किसी बदले की उम्मीद के, उसने काम किया तन्हाई में, किसी को नहीं मालूम, उसको मालूम अल्लाह को मालूम, कुत्ते को समझ रहा भी कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उसने खिदमत की, अल्लाह ने उसकी नेकी को। इसमें सोचने की चीज ये है, उसमें एहसास क्यों आया, क्यों इतना किया उसने, ड्राइविंग फोर्स उसके लिए क्या है, क्या मोटिवेशन उसकी है, एक ही चीज उसने क्या सोचा दिल में, उनको भी वही तकलीफ हो रही जो मुझको हो रही थी। ये जो एहसास है ये बहुत कीमती चीज है इंसान के लिए, और ये कब पैदा होता है, अमूमन जब आदमी खुद उस तकलीफ से गुजरता है। बीमारी, दुनिया भर में जितने लोग परेशान हाल हैं, खास तौर से बीमारी में मुब्तला हैं, आदमी के एहसास को चीज और ज्यादा ताजा कर देती है। दवाखाने में आदमी जाके बैठता है, तुमको क्या हुआ, इसको पूछता है, उसको पूछता है, खुद बीमार है ना, वरना बाकी दिनों में कभी जाके बैठा दवाखाने में नहीं, चलो जाके पूछेंगे लोगों को किसको किसको क्या तकलीफ है, लेकिन पड़ा है वहां पे आसपास जो बेड पे है, क्या हुआ तुमको, कैसा क्या है तुम, हाँ देखो, उनकी तकलीफ का एहसास इसको तब होता है, क्योंकि ये भी बीमार है। बीमार में क्या है, सब बीमारी में सब मुश्तरक है, सब बीमार भाई, तब जाके उसको एहसास होता है। ये जो एहसास है बहुत कीमती है, दूसरे के दुख दर्द का एहसास, ये बीमारी में इंसान को पैदा होती है। जो हदीस मैंने बयान की है बुखारी मुस्लिम में है। आइए आगे बढ़ते हैं, नंबर 6, खुद एहतिसाबी और तौबा का मौका। बीमारी में क्या है, कुछ करना है, लेटे रहो, बहुत लेट हो रहा, लेट जा, ऑफिस नहीं, कामकाज ये वो सब, छुट्टी, लेटे रहो, पड़ा रहता है, वो जो पड़ा रहना है सोचता, जिंदगी मेरी कहां जा रही, क्या कर रहा मैं सुबह से शाम तक, ये डॉक्टर भी बोलता है आके बीच बीच में आता हो चेक करने के लिए, बहुत भाग दौड़ करते ना, लेटो जरा, आराम नहीं करते, करना चाहिए तुमको, सुबह से शाम तक क्या करूं डॉक्टर साहब, बहुत जिम्मेदारियां हैं, हाँ ऐसा होगा तो क्या करेंगे, पड़ गए तो ऐसी, इंसान सोचता है मेरी जिंदगी में कहां जा रहा है, सुबह से शाम तक मैं काम धंधे में पड़ा रहता हूं, बीवी बच्चों के साथ वक्त नहीं देता हूं, बच्चा बिगड़ रहा है उसका ख्याल मुझको नहीं है, क्या करता है क्या नहीं करता मुझको एहसास नहीं है, बीवी उसकी परेशानियां, कभी बैठ के दो मोहब्बत के बोल उसके साथ नहीं बोल पाता मैं कहां जा रहा हूं, मेरी नमाजों का क्या, मैं दीनी कुछ जिक्र अजकार तिलावत खैर बैठ के अपने बारे में सोचना, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, सुबह गया शाम आया, सुबह गया शाम आया, ओवर टाइम, कभी बिजनेस, कभी पैसा पैसा पैसा, क्या कर रहा मैं, मौका मिलता है। अक्सर बीमार लोग देखिए पड़े छत को देखते रहते हैं, छत पे कुछ लिखा हुआ है, नहीं सोच रहा हूं, कुछ लिखा हुआ नहीं होता है लेकिन वो पढ़ रहा होता है, सोचता है वो अपनी जिंदगी के बारे में, सोचने के लिए एक छोटा ब्रेक अल्लाह उसको देता है, सोच अभी भी टाइम है, क्यों, मौत आने वाली है, ऐसा पड़ा कब्र में पड़ने वाला है तू, कब तक चलेगा ऐसा, एक दिन तेरा मामला स्टॉप होने वाला है, एक दिन तेरी मौत आने वाली है, आज बीमार पड़ा, सोच जिसम तेरा यहां प्रॉब्लम हार्ट का, कभी किडनी का, कभी कुछ, सोच जरा मौत आने वाली है, अपना एहतिसाब कर, अपने बारे में सोच, तेरी प्रायोरिटीज जिंदगी में क्या है, पैसा है नहीं, पैसा शिफा देता नहीं ना, फिर जिंदगी में क्या काम आएगा, आखिरत में क्या काम आएगा, ये पैसा लेके जाएगा कब्र में नहीं, डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब ये पैसा लो अच्छा कर दो, भाई हम दवा दे सकते हैं, अच्छा करना हमारे हाथ में नहीं है, कोई डॉक्टर से आप पूछिए डॉक्टर साहब आप ये फॉर्म लाया हूं मैं, साइन कर दो इस पे, क्या है फॉर्म, ये मैं गारंटी देता हूं कि तुम अच्छे हो जाओगे, डॉक्टर बोले ये हम नहीं कर सकते, बल्कि हम तो तुम्हारे से साइन लेने वाले, कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं, डॉक्टर क्या बोलेगा, ये कहां से उठा के लाए भाई, कौन सा फॉर्म है ये, कहां से लाए, मैं मेरे कंप्यूटर पर टाइप कर रख तेरे पास, इस पे साइन कर, क्या ही कुछ हुआ अगर तो हम जिम्मेदार नहीं,
डॉक्टर साहब मैं 10 लाख दे रहा हूं, 20 दे, हम जिम्मेदार नहीं, हम इलाज कर सकते हैं, अच्छा नहीं कर सकते। समझ में आई बात? एहसास होता है पैसा कुछ भी नहीं है। बाजू का डॉक्टर के बड़े बड़े मालदार लोग बोलते डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, क्या करूं क्या मैं क्या भगवान हूं? डॉक्टर्स बोलता है डॉक्टर, मैं गॉड नहीं हूं भाई, तो तुम्हारा जो भी गॉड जिसको मानते हो तुम उसको पुकारो, मैं डॉक्टर हूं डॉक्टर। तब मालूम पड़ता है पैसा कुछ नहीं है, पैसे से नहीं होता है, अल्लाह के हाथ में। आदमी सोचता है पैसे के पीछे मैं भाग रहा हूं, दुनिया के पीछे मैं भाग रहा हूं, बिजनेस जॉब काम धंधे ये सारी चीजें दुकान मकान, मैं क्या कर रहा हूं सोचता है। सोचने को अपने को टाइम नहीं है, क्यों? काम धंधे से निकले हम व्हाट्सएप, व्हाट्सएप से निकले हम फेसबुक, फेसबुक से निकले हम और दूसरी तफरीहात, आदमी इसी में लगा रहता है। लेकिन बीमारी आदमी को थोड़ी देर के लिए रोक देती है, रुक सोच, अपनी जिंदगी का जायजा लिए, तौबा कर। बीमारी में आदमी क्या करता है, अल्लाह कुछ गलती हुई तो माफ कर दे, अकेले बोलता है जब कोई आसपास नहीं रहता, अल्लाह कुछ तो गलत मैंने किया है, अल्लाह अगर कुछ भी गलत हुआ मालूम नहीं इससे बाहर निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा। बीमार वैसे ही बहुत डर जाता, वो एक्चुअल बीमारी से डरता ज्यादा, उसको ऐसा लगता मरता अब मैं, अरे नहीं मरता तो डॉक्टर भी बोलता है, लेकिन उसको डर लगता है कभी मर गया तो इसी हाल में। तो उस वक्त में क्या करता है बंदा, अल्लाह मुझको माफ कर दे, उसको अपनी गलतियां याद आती हैं, आम दिनों में नहीं याद आती, आम दिनों में प्रोजेक्ट याद आते हैं, लेकिन जब बीमार होता है तो आदमी को अपनी गलतियों का एहसास होता है, तौबा करता है। बीमारी इंसान को अपनी इस्लाह की सोच की तरफ ले जाती है। फिर चुपके से कैसा बोलता, अल्लाह अच्छा हुआ ना मैं नमाज पढ़ूंगा, क्या बोलता है, अल्लाह तो अच्छा कर दे मैं अब से अच्छा बन के जीऊंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं थोड़ा सोचता और दिल में ऐसा होता नहीं सुधर सकता तू, ये होता नहीं नहीं तू चुप रहे, अल्लाह मैं अच्छा बनूंगा। तो आदमी उस वक्त में एहसास उसको क्या होता है, ऐसा हमेशा नहीं चलने वाला है, सुधरना पड़ेगा और मेरी कुछ गलतियां हैं मुझको उसको सही करना पड़ेगा, अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह जो भी गुनाह में माफ कर दे, जो भी गलतियां माफ कर, आदमी से तौबा करता है अल्लाह से। तो बीमारी में इंसान को खुद एहतसाबी का मौका मिलता है और आदमी सोचता है कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई जिसकी सजा ही मिल रही है, ये मौका इंसान को सोचने का मिलता है। अल्लाह फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर, जो भी मुसीबत तुमको पहुंची है ये तुम्हारे हाथों की कमाई का नतीजा है, जो भी मुसीबत तुमको पहुंची है ये तुम्हारी करतूत के बदले हैं, वो या अगवान कतीर, और बहुत सारी गलतियां तो ऐसी हैं कि अल्लाह उनको माफ भी कर देता है। लेकिन कभी इंसान की गलतियों पर अल्लाह दुनिया में उसका मुआखजा भी करता है, कभी सजा के तौर पर और कभी कफारे के तौर पर। आदमी सोचता कहां गलत हो रहा है मुझसे, कहां गड़बड़ कर रहा हूं मैं, जब आदमी सोचता है तो इस्लाह का दरवाजा उसके लिए खुलता है। कितने लोग हैं बीमार होते हैं उसके बाद फिर इबादत गुजार दीनदार हो जाते हैं, क्यों? ये उनको याद आता है हमेशा मैं जीने वाला नहीं हूं, सेहत हमेशा बाकी रहने वाली नहीं है, बीमारी है, अब सीधे हो जाओ, अब सही हो जाओ, अब वक्त आ गया जागने का। ये जो एहतसाब है ये बीमारी में इंसान को नसीब होता है। ये आयत सूरह शूरा की है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है अयनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, कहीं भी तुम रहो मौत तुमको पकड़ के रहेगी, मौत तुमको आ दबोचेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजि मुशय्यदा, चाहे तुम बड़े बड़े किलों में महफूज क्यों ना हो जाओ। कोई आदमी दुश्मन से बचाने के लिए बादशाह किला बना लिया, मौत के फरिश्ते से बना सकता है? चाहे तुम बड़े बड़े किलों में महफूज हो जाओ, मजबूत किलों में महफूज हो जाओ, तुमको मौत आकर रहेगी। وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ, अगर तुमको कोई अच्छाई पहुंचती है, يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ, मुनाफिकीन का हाल बयान हो रहा है, या उन लोगों का जो ईमान में कच्चे हैं। और अगर कोई मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से पहुंची, यानी नबी की वजह से। अल्लाह ने फरमाया कुल, ए नबी आप कहिए,
كل من عند الله, ساری تکلیفیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا, کیسی قوم ہے یہ, بات سمجھتی نہیں. منافقین, نہیں سمجھتا ان کو. ما اصابك من حسنه فمن الله, جو بھلائی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وما اصابك من سيئه فمن نفسك, اور جو تکلیف تم کو پہنچتی ہے وہ خود تمہاری وجہ سے ہوتی ہے, تمہاری غلطیوں کی وجہ سے اللہ دنیا ہی میں تم پر تکلیف ڈالتا ہے. وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا, اور اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور بس اللہ اس کے لیے گواہ کافی ہے. منافقین کیا کرتے تھے, یہ جب سے آئے نا مدینہ ان کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی مدینہ پہ. اللہ نے کہا سب تمہاری اپنی کرتوت ہے, تمہاری اپنی کرتوت کی وجہ سے, اور یہ نبی مصیبتیں نہیں لا رہے ہیں, یہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. جو بھی تکلیف زندگی میں آتی اللہ بھیجتا ہے. تو انسان سوچتا ہے کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تکلیفیں آ رہی ہیں, تاکہ میں اپنے عمل کی اصلاح کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے حال کو بھی درست کرے. جب انسان اپنے حال کو صحیح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی حالات کو صحیح کرتا ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے حالات صحیح ہوں, اس کو چاہیے کہ اپنے حال کو صحیح کرے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ خود اپنے حال کو نہ بدلے. یہ منفی اعتبار سے بتایا کہ بگاڑ اللہ تعالیٰ سزا اس کو اس وقت تک نہیں دیتا ہے جب تک کہ وہ اپنے اچھے حال کو چھوڑ کے برے حال پہ نہ جائے. اس کا بالعکس بھی ہے کہ جب اپنے حال کی اصلاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بھی سنوارتا ہے. نمبر 7, بیماری موت کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اچانک موت آ جاتی ہے. بیماری کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی مینٹلی تیار ہو جاتا ہے موت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, موت الفجأتی اخذت اسف, اچانک موت افسوس کی پکڑ ہے, افسوس والا مواخذہ ہے. ایک آدمی اچھا خاصا ہے, کھیل رہا ہے, کود رہا ہے, کھا رہا پی رہا ہے, ادھر ادھر گھوم رہا پھر رہا ہے, تجارت کر رہا, سب کچھ کر رہا, بے فکر ہے, اچانک ہارٹ اٹیک آیا, موت آ گئی. نہ وصیت کرنے کا موقع ملا, نہ توبہ کرنے کا موقع ملا, نہ کسی اور اپنی اصلاح کا, ظلم زیادتی کسی پہ کی تھی, اس کے سارے معاملے صلح صفائی, غلطیاں کی تھی, کسی کا دل دکھایا تھا, معافی شافی سارا ہو گیا, پھر موت آ رہی تو کیا ہو گیا, اکاؤنٹ پورا کلیئر کر کے گیا نا؟ نہیں, اچانک موت آ گئی, معاملہ سارا کا سارا دھرا کا دھرا رہ گیا. جن کے حقوق تھے وہ ادا نہیں کر پایا, جن سے دل دکھایا تھا معافی نہیں مانگ پایا, وصیت جن کے حقداروں کی ان کو قرضے وغیرہ چکانے تھے وہ نہیں کر پایا, اور اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کرنا تھا وہ بھی نہیں کر پایا. کلمہ پڑھتا, توبہ کرتا, استغفار کرتا, گناہوں سے اللہ کی مغفرت کی دعا کرتا, موقع ہی نہیں ملا اس کو, اچانک گیا دنیا سے. تو ایسا معاملہ یہ کیا ہے, بعض اوقات یہ خیر کی علامت نہیں ہوتی ہے, ہمیشہ شر نہیں ہوتا ہے. کبھی آدمی واقعی اچھا ہوتا ہے اور اچانک چلا جاتا ہے, اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اچھے حال پہ تھا, اچھے حال میں چلا جائے گا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غلط زندگی گزار رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے, بڑھاپے میں سب جب ریٹائر ہو جائیں گے سب ہاں دین پہ لگ جائیں گے, یہاں سے ریٹائر ہو کے وہاں اٹینڈ کریں گے, لیکن موقع نہیں آتا ہے. آدمی سوچتا ہے کہ 50-60 کے بعد کام کیا رہتا اپنے کو, دین. جب کچھ کام نہیں رہے گا تو دین کا کام کریں گے. لیکن بعض اوقات اس کے درمیان ہی اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتا ہے, اور ایسے اوقات میں جبکہ اس نے کچھ سیٹ نہیں کیا ہے آخرت کے حساب سے. آدمی چھوٹا موٹا سفر کرتا ہے اس کے لیے بھی سب سیٹ کرتا نا, کل صبح کی بس ہے, رات میں بیگ ویگ سب پیک کرتا ہے, ہاں سب موبائل یہ وہ اپنے کارڈ وارڈ پیسے ویسے سارے رکھ لیتا ہے, سب ٹھیک ٹھاک کرتا, کیسا اٹھے بھاگنا ہے. موت کی تیاری, یہ چھوٹا سفر ہے بھائی, ایک شہر سے دوسرا شہر ہے, ایک دن میں جانا ہے واپس آنا ہے, اس کے لیے اتنی تیاری. اتنا لمبا سفر ہے واپس نہیں آنا ہے, اس کی تیاری کا ہے. उसकी तैयारी कहां है? बीमारी उसकी तैयारी के लिए इंसान को तैयार करती है। आदमी देखता है बीमार हो गया, हो सकता है मैं अच्छा नहीं हूं, आसार अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, इलाज नहीं, बिगड़ते जा रहा है, तो आदमी मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता है, शायद मेरी मौत आ सकती है। इसमें दुख होता है, तकलीफ होती है, थोड़ा लड़ता है, लेकिन मान लेता है कि अब शायद नहीं हो पाएगा। फिर आदमी बुलाता है, रिश्तेदार आते हैं, भाई जिससे भी कुछ गलती हुई माफ कर दो। बोलते भाई हमने माफ कर दी, छोड़ दो सब, क्यों अभी सोच रहे ऐसा, माफी शाफी भी हो गई, पैसा वैसा जायदाद वगैरह है किसी के कर्जे देने, वो सारे बिजनेस वगैरह के सब दे देता है। तन्हाइयों में अल्लाह से रो रो के दुआ करता है, अल्लाह मैंने बहुत पाप की जिंदगी गुजारी, अल्लाह तो माफ कर दे, जो भी गलतियां हुई हैं अल्लाह माफ कर दे, सच्चे दिल से माफी मांग रहा हूं, अब तो कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, तेरे सिवा कोई नहीं। उस वक्त की दुआ भी कैसी होती है? हाँ, उसमें वो उबूदियत के जज्बात होते हैं, कबूलियत के वसायल बढ़ जाते हैं, असबाब बढ़ जाते हैं, मांगता है अल्लाह से। और फिर रात में सुबह में आके लोग देखते हैं गए, रोना धोना हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, इसने सब अपना मामला दुरुस्त कर लिया, दुनिया में चाहे कुछ गड़बड़ की थी सब माफी शाफी करके, अल्लाह से भी सही, माँ बंदों से भी सही, सब जिधर का उधर करा और गया। अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अगर बीमारी नहीं आती तो उसी तरह पड़ा रहता दुनिया में, दुनिया 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 करता रहता और बोला रहता, लेकिन बीमारी बाज औकात इंसान के लिए खैर बन जाती है, उसको मौका देती है अपने बिगाड़ को दुरुस्त करने का और सारा जिधर का उधर करके जाने का, लिहाजा ये भी खैर होती है। इसीलिए कहा मौतुल फजअति अख़दतु असफ़िन, आपने फरमाया अचानक मौत, ये अचानक पकड़े, फरिश्ता आया पकड़ के ले गया, कोई मौका ही नहीं दिया उसको, तो एक एतबार से अच्छा नहीं है ये, इस बात की अलामत नहीं कि वो जहन्नम में जाएगा, लेकिन ये अच्छा नहीं है। थोड़ा मौका मिलता, नेक भी आदमी था, बहुत कुछ कर सकता था, थोड़ा सा टाइम उसको दे दे और उस टाइम में वो अपना बहुत सारे मामला दुरुस्त कर ले, तो ये वही मौका उसको मिल सकता था। इस हदीस को इमाम अहमद और अबू दाऊद ने रिवायत किया है। इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला कहते हैं कुंतु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजाअहु रजुल मिन अंसार, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, एक शख्स अंसारी आए, फसल्लम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने सलाम किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ثم قال और कहा या रसूल अल्लाह अय्युल मुमिनीन अफ़ज़ल, मोमिनों में सबसे अफजल कौन है? सारे मोमिनों में, सुन लीजिए इसको, सारे ईमान वालों में सबसे अफजल कौन है? قال احسنهم خلقا, का जो उनमें सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाला हो। सारे ईमान वालों में सबसे अफजल कौन है? जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। अच्छा अखलाक क्या है? एक इंसान लोगों से अच्छे से मिले और जो खैर उसके पास है उससे उनको फायदा पहुंचाए, जो शर उसके पास है उससे उनको बचाए रखे। हर आदमी में कुछ ना कुछ एक जानवर होता है हर आदमी में, हाँ, उस जंगली जानवर से लोगों को बचाए रखे, अपने शर से दूसरों को महफूज रखे, ये अच्छा अखलाक है। कहा कि अहसनहुम खुलुकन, काला फा, अब ये सुनिए, फअय्युल मुमिनीन अक्यस, सारे ईमान वालों में सबसे अकलमंद कौन है? बहुत पढ़ा लिखा, बहुत पैसा कमाने वाला, बड़े ओहदे पर, डबल पीएचडी, नहीं, कौन है जो सारे ईमान वालों में सबसे अकलमंद है? काला अक्सरहुम लिलमौति ज़िक्रन, जो सबसे ज्यादा उनमें मौत को याद करने वाला हो, वह अहसनहुम लिमा बादहु इस्तेदादन, और मौत के बाद की जो जिंदगी है उस जिंदगी की सबसे ज्यादा तैयारी करने वाला हो, उलाइकल अकियास, यही अकलमंद लोग हैं। कई इस किसको कहते हैं सबसे अकलमंद, बहुत चालाक, बहुत होशियार, बहुत समझदार, बहुत अकलमंद, बहुत हकीम, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट, कौन है वो? जो सबसे ज्यादा मौत को याद रखने वाला हो और मौत के बाद की जिंदगी की सबसे ज्यादा तैयारी करने वाला, ये अकलमंद है। छोटी जिंदगी के लिए चालाकी करने वाला नहीं, बड़ी जिंदगी के लिए अकल चलाने वाला, उसकी तैयारी और सेटिंग करने वाला सबसे ज्यादा अकलमंद है। तो कहा कि सबसे अकलमंद कौन है? जो मौत को सबसे ज्यादा याद करने वाला। तो ये इब्न माजा की रिवायत है और ये हसन दर्जे की रिवायत है। तो बीमारी का सातवां फायदा ये है कि आदमी को मौत के लिए तैयार करती है। बीमारी में क्या याद आता है? बीमारी में क्या याद आती है? मौत ही याद आती है।
मरे वक्त कैसा होगा ना,
क्योंकि रात में लाइट बंद कर दिए, सब सोए हुए खर्राटे ले रहे दूसरे, और ये अकेला जाग रहा, 2 बजे उठ के आंखें खोल के छत तक रहा है,
अंधेरे में लगता कब्र में कैसा होगा ना,
बुरा बुरा ही याद आता ना सब। बीमारी में अच्छा तो कुछ दिखता नहीं है, हाँ वहां पे ऐसे ही लगता है, पूरी वो जो कमरा है जिसमें रखे हुए उसको है वो कब्र ही दिखाई देती है, कब्र में कैसा होगा, घबराहट हो रही है एकदम, उसको याद आती है मौत। ये उसके लिए भलाई होती है, तौबा का दरवाजा उसके लिए खुलता है। नंबर 8, बीमारी का एक फायदा यह है कि बीमारी से जब शिफा होती है तो ये शिफा उसके दिल में शुक्र पैदा करती है। बीमार पड़ा, बहुत तकलीफ हुई, फिर उसके बाद दवाई लिया, इलाज किया, सब कुछ किया, अब जैसा कि वैसा अच्छा हो गया, टेम्पररी बीमारी, अब उसके बाद लगता है अल्हम्दुलिल्लाह कैसे तकलीफ हो रही थी ना, अब कैसा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। तो आदमी जब बीमारी से शिफा उसको मिलती है तो ये भी शिफा उसके लिए शुक्र का जरिया बनती है। और शुक्र का फायदा क्या है? अल्लाह ताला फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो हमारी तुम्हारी नेमत हम और बढ़ाएंगे। सेहत मिलने पर अल्लाह का शुक्र करना, शिफा पर अल्लाह का शुक्र करना सेहत में और बरकत का जरिया बनता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिकुल्लि दाइन दवा फइदा उसीब दवा उद्दा बरअ बिइज़्निल्लाहि अज़्ज़ा वजल। सही मुस्लिम की हदीस है कि हर बीमारी की एक दवा है, हर बीमारी की एक दवा है, जब दवा बीमारी के मुताबिक हो जाती है, दवा बीमारी के मुआफिक हो जाती है, तो अल्लाह के हुक्म से आदमी सेहतमंद हो जाता है, शिफायाब हो जाता है। अगर दवाएं नहीं होती दुनिया में तो दुनिया में कोई दवाई नहीं होती, कैसा होता है? आदमी को शुक्र दिल में पैदा होता है, कभी शुक्र ये भी होता है अल्लाह ने बीमारी का इलाज भी रखा अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी होता अच्छा हुआ हम लोग इस दौर में पैदा हुए, हाँ पिछले जमाने में बहुत सारी बीमारियां ऐसी थी जिनका इलाज ही नहीं था, यानी लोगों को उसका इलाज मालूम नहीं था, या इलाज था भी तो कैसा भयानक इलाज, आज आदमी का ऑपरेशन भी हो जाता है उसको मालूम ही नहीं पड़ता है, पहले जमाने में वैसे ही काटना पड़ता था, हाथ पांव सड़ गया तो दांत हाँ लकड़ी या कपड़ा मुंह में देते थे और काटते थे, एक जमाना ऐसा भी था ना, कभी दाग भी देते थे जख्मों को सड़ना नहीं, इसके लिए क्या करते थे आग बिल्कुल गर्म करके लोहा जख्म के ऊपर लगा देते ताकि वो क्या हो, सड़ान उसकी या उसका जो भी मामला है खत्म हो, क्या क्या करते थे। आदमी शुक्र करता है अल्लाह का एहसान है हम ऐसे दौर में कि जिसके अंदर इलाज का तरीका बहुत आसान हो गया है, और इतनी सारी बीमारियां हैं जिनके लिए आज आसान इलाज भी मौजूद है, बहुत सारी बीमारी जिससे एक जमाने में लोग कई मरे आज वो बस बुखार और छींक और इसकी तरह हो गई है वो बीमारियां। तो ये नेमत अल्लाह की, इंसान को इसका एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने बीमारी से शिफा का भी रास्ता रखा है, ये अल्लाह का एहसान है। अगर नई बीमारी से अच्छा होता आदमी, हमेशा बीमार होता, एक बार बीमार का मतलब गया, बीमारी बीमार बीमार बीमार, ऐसा कैसा होता आदमी, कितना परेशान होता है, लेकिन आदमी बीमार होता है अच्छा भी होता है, तो ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। नंबर 9, बीमारी में अगर आदमी ये सबक लेता है तो बीमारी का एक फायदा ये है कि एक इंसान नया इंसान बन के बाहर आता है। कितने लोग हैं बीमार होते हैं, जब वापस से दुनिया में आते हैं ठीक ठाक होके, फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, अगर वो अपनी बीमारी से सबक लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, قال الله تعالى اذا ابتليت عبد المؤمن, जब मैं अपने मोमिन बंदे को आजमाइश में मुबतला करता हूं, बीमारी में डालता हूं, तकलीफ में डालता हूं, किसी भी मुसीबत में डालता हूं, फलम यशकुनी इला अवादी ही, अगर वो अपने आने जाने वालों से शिकायत न करें, बीमार है दवाखाने में लोग मिलने आ रहे, देखो ना क्या अल्लाह ने किया ऐसा, जिसको उसको बोल रहा है, अगर वो आने जाने वालों से शिकायत न करे, अववाद इयादत करने वालों से शिकायत न करे, किसकी? अल्लाह की। अतलक्तुहु मिन इसारी, मैं अपनी कैद से उसको आजाद कर देता हूं, मैं अपनी कैद से उसको आजाद कर देता हूं। बीमार कैदी होता है, मुसीबत में फंसा हुआ अल्लाह का कैदी होता है, अल्लाह उसको मुसीबत से आजाद कर देता है। इस बीमारी के बारे में नहीं, और भी मुसीबतों के बारे में है। ثم ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه, फिर मैं उसके गोश्त को दूसरे गोश्त से और उसके खून को दूसरे खून से बदल देता हूं। ثم يستأنف العمل, फिर वो नए सिरे से अमल करने लगता है। मालूम हुआ कि मुसीबत में जब आदमी मुब्तला होता है और सब्र कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको उसके नतीजे में एक नया इंसान बना देता है, उसके गोश्त को नए गोश्त से, उसके खून को नए खून से, उस शख्स को एक नया इंसान बनाकर नए सिरे से वो जिंदगी गुजारने लगता है। कब? जब शिकायत न करे, राजी रहे। तो बीमारी का एक फायदा ये भी होता है कि इंसान की शख्सियत तरक्की करके एक बेहतर इंसान में तब्दील हो जाती है। ये इमाम हाकिम और बेहकी की रिवायत है और ये रिवायत सही है। नंबर 10, आखिरी चीज, सब्र के जरिए अल्लाह ताला की मईयत और उसका अजर नसीब होता है। सब खोके अल्लाह को पाया तो नुकसान है कि फायदा है? क्योंकि अल्लाह सब वापस दे सकता है, लेकिन सब मिला और अल्लाह को खोया, सब मिलके अल्लाह दिला सकते? अल्लाह को खुद पाना पड़ता है, और जो अपने आप को अल्लाह को सौंपता है अल्लाह ताला उससे करीब होता है, अल्लाह उसको मिलता है। जो अपने आप को खोता नहीं अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला उसका होता नहीं। उसको याद रखिए, मैं नहीं अल्लाह, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे से कुछ नहीं होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला जब तक के तौफीक न दे, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अंबिया क्या कहते थे? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और जो भी हम कर रहे हैं वो अल्लाह की तौफीक से कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, न किसी को हिदायत दे सकते हैं, न खुद हिदायत पर रह सकते हैं अल्लाह के बगैर। तो सब्र जो है, बीमारी में जब आदमी सब्र करता है तो उसको एक बहुत बड़ी नेमत मिलती है। वो क्या मिलती है? अल्लाह की मईयत, अल्लाह उसके साथ हो जाता है। अल्लाह का साथ होना उसको रूहानी गिजा देता है, अल्लाह का साथ होना उसको अल्लाह की नुसरत का हकदार बनाता है, अल्लाह का साथ होना उसको अल्लाह ताला की हिफाजत का हकदार बनाता है। जिसके साथ अल्लाह ताला हो जाए, उसके मुखालिफ कोई भी हो, कुछ फर्क पड़ता? तो अल्लाह की मईयत ये रूहानी तरक्की और मादी मनाफे दोनों को खींचती है। अल्लाह ताला फरमाता है, वस्बिरू वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सूरह अल अनफाल में अल्लाह ने कहा, वस्बिरू, सब्र करो। क्यों? अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करना क्या है? दिल में शिकायत नहीं करना, जुबान से एहतजाज नहीं करना, जुबान से शिकायत नहीं करना, और ऐसी हरकतें नहीं करना जो सब्र के खिलाफ हो। ये सब्र है कि एक इंसान दिल में अल्लाह से नाराज ना हो, जुबान से अल्लाह के फैसले पर एतराज ना करे, और हाथ आ पाई कुछ ऐसी तोड़ फोड़ ना करे, कुछ गलत काम ऐसे ना करे जिससे अल्लाह की अल्लाह के फैसले से नाराजगी का इजहार होता है। तो ये क्या है? सब्र है। का वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं, सअल्तु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनि ताउन, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन के बारे में पूछा। ताउन प्लेग जो आता है, चूहे वगैरह उसमें होते हैं। फअखबरनी अन्नहु अज़ाबुन यबअथुहु अल्लाहु अला मन यशा। आपने फरमाया वो अल्लाह का अजाब था। ताउन अल्लाह का अजाब है, अल्लाह जिस पर चाहता है ये अजाब डाल देता है। वो अन्न अल्लाह जअलहु रहमतल लिल मुमिनीन, लेकिन اللہ تعالیٰ نے اگرچہ تعاون اللہ کا عذاب ہے لیکن اس عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے. مصیبت رحمت بھی ہو سکتی ہے. اس تعاون کو اللہ نے کیا کیا؟ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. اس کو اللہ نے رحمت بنا دیا ہے. کیسے؟ لیس من احد یقع الطاعون فینکت فی بلدہ صابرا محتسبا. کوئی بھی ایمان والا بندہ اس کے علاقے میں پلیگ طاعون کی بیماری وبا پھیل جائے اور وہ اسی شہر میں ٹکا رہے صبر کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. صبر کریں اور احتساب کریں, اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور شکایت نہ کرے, برداشت کرے تکلیف کو. یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ, اور اپنے دل میں اس بات پر یقین رکھے کہ اس کو وہی تکلیف ہو سکتی ہے جو اللہ چاہے. اللہ نے جو لکھا ہے اس کے سوا کوئی تکلیف اس کو نہیں پہنچ سکتی ہے. اپنے دل میں اس بات کا یقین رکھے اور اپنے شہر میں رکا رہیں اور صبر کریں, ثواب کی امید رکھے. الا کان لہ مثل اجر شہید, اس آدمی کو شہید کی طرح ثواب ملے گا. کسی شہر میں پلیگ, کسی گاؤں دیہات میں بیماری وبا پھیل جائے اور آدمی وہیں ٹکا رہے, بھاگے نہیں. وبا پھیلتی تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ شہر چھوڑ کے بھاگتے ہیں. ایک بار وبا پھیل گئی, بھاگنا نہیں چاہیے. اس کا ایک نقصان یہ بھی کہ وہاں کی بیماری بعض اوقات دوسرے علاقوں میں بھی چلی جاتی ہے. تو کہا کہ وہیں رکا رہے, اللہ پر بھروسہ رکھے, یقین رکھے کہ سوائے اس کے جو اللہ نے لکھا ہے کوئی تکلیف اس کو نہیں پہنچ سکتی ہے. اور صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے. کیا اجر اس کے لیے ہے؟ اس کو شہید کا ثواب ملے گا. شہید کا معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ نمبر ایک, شہید کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور قبر کا عذاب نہیں, اور آخرت میں نعمتیں وہ الگ ہیں. تو شہید اور اپنے گھر والوں کی بھی سفارش کرے گا شہید, اس کے لیے کیسا اجر ہے؟ شہید کی طرح اس کے لیے اجر ہے. تو یہ صبر اور احتساب کا نتیجہ ہے. آدمی صبر کرے, برداشت کرے, دو چیزیں ہونی چاہیے. دوسری چیز سے پہلی آسان ہو جاتی ہے, یاد رکھیے اس کو, صبر اور احتساب. احتساب سے صبر آسان ہوتا ہے. اس کو سمجھے جو آدمی, اس کے لیے بہت بڑی چابی ہے اس میں. ثواب اور اجر کا خیال, امید, تکلیف برداشت کرنا آسان کر دیتی ہے. نہیں, دکان پہ آدمی صبح سے شام تک بیٹھا ہے, کیوں؟ گورنمنٹ نے طے کی اس کے لیے. نہیں, وہ تکلیف برداشت کر رہا, دل نہیں چاہتا ہے بیٹھنا, لیکن کیا ہے, امید ہے کہ کسٹمر آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ آئے گا. یہ جو امید ہے ملنے کی, پانے کی امید, تکلیف کو ہلکا کر دیتی ہے. اگر کسی آدمی سے کہا جائے, یہ جو لائن لگی دکھ رہی ہے, ہاں تم بھی اس لائن میں کھڑے ہو جاؤ, تم کو 10 لاکھ ملیں گے شام تک. لیکن دھوپ ہے نا, ہاں اسی لیے تو بول رہے ہیں. تو آدمی کیا کرے گا, رکے گا کہ نہیں رکے گا؟ ہم میں سے کتنے لوگ رکیں گے؟ تقریباً لوگ رکے. 10 لاکھ ہے بھائی, دھوپ میں ایک دن دھوپ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو آدمی کیا کرے گا, اس دھوپ میں رکے گا. تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی, لیکن پھر بھی رکے گا. کیوں؟ اس کی نگاہ میں کیا ہے دھوپ سے زیادہ؟ دھوپ سے زیادہ 10 لاکھ. اور ایک دن کی دھوپ میں کتنا آدمی کام کرتا ہے, اتنے سالوں سے میں کام کر رہا ہوں, میرے ایک مہینے کی تنخواہ اتنی ہے. اگر مان لو ایک مہینے میں 1 لاکھ بھی کماتا ہے, 50,000 کماتا ہے, تو کتنے مہینے کی تنخواہ ہے وہ؟ 20. اگر ایک مہینے میں 50 کماتا ہے, کتنے مہینوں کی تنخواہ ہو جائے گی؟ سوچیے, اتنا مل رہا نا, تو ایک دن سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا خاصا اتنے سارے پروجیکٹ اس کے ذہن میں گھومیں گے. 10 لاکھ آئے, لائن میں کھڑا ہے, کیا سوچے گا؟ 20,000 اس کے, 50,000 اس کے, یہ گیا, 4 لاکھ میں سب کلیئر, بچے ہوئے 6 لاکھ, ماشاء اللہ. پھر ہاں انڈے کی دکانیں کھولنا ہے اپنے کو, شیخ چلی, مرغی خریدوں گا. ہاں وہاں کھڑے کھڑے دھوپ میں, پیچھے والا بھائی آگے سر کو نا, بیچ میں گیپ. ہاں یہ حال انسان, دھیان بھی نہیں رہے گا تکلیف کے اوپر. आदमी की तकलीफ हल्की कब होती है? जब उस तकलीफ पर क्या मिलने वाला है आदमी के सामने हो और उसकी कदर निगाह में हो। तो एहतिसाब सब्र आसान कर देता है। कहा साबिरन मुहतसिबन, तो अगर ये करें उसके लिए सवाब किसका है? शहीद का। इसको इमाम अल बुखारी ने रिवायत किया है। आखिरी हदीस बयान करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लयवद्दन्ना अहलुल आफियति यौमल कियामा। इसको याद रखिए इस हदीस को, इमाम अत-तिर्मिज़ी ने इसको रिवायत किया है और यह हदीस हसन दर्जे की है। बहुत सो ने शायद इसको नहीं सुना होगा इससे पहले। लयवद्दन्ना अहलुल आफियति यौमल कियामा, जो लोग बिल्कुल आफियत में जीते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, छाव में आराम से एकदम मौज मस्ती बगैर किसी प्रॉब्लम के आफियत में रहते हैं, जिन लोगों को दुनिया में आफियत की जिंदगी मिली, लयवद्दन, वो बहुत तमन्ना करेंगे आखिरत में कयामत के दिन। क्या तमन्ना करेंगे? अन्न जुलूदहुम कुरिदत बिल मकारीद, काश के उनकी चमड़ियां कैंची से कतर दी जाती है। क्यों? मिम्मा यरौना मिन सवाब अहलिल बला, जब देखेंगे मुसीबतें जिन पर आई उनको कितना अजर मिल रहा है, जिन पर दुनिया में तकलीफें आई उनको कितना बड़ा सवाब अल्लाह ने दिया, क्या क्या मकाम उनको दिए, क्या क्या नेमतें उनको दी, क्या ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट, जब उसको देखेंगे तो काश के दुनिया में हमारी चमड़ियां काट दी जाती कैंचियों से, इतनी तकलीफ हमको होती ताकि हम इनसे और ऊपर जाते हैं। उनको तरक्की किससे मिली? कुछ भी नहीं इसमें। मिन सवाब अहलिल बला, जिन पर दुनिया में बलाएं आई, मुसीबत, तकलीफ, बीमारी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, दिमाग खराब, घर की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, एक के पीछे एक मुसीबतें उन पर आई, और आखिरत में जब वो जाएंगे अल्लाह इतना देगा उनको कि जिनको तकलीफें नहीं आई वो सोचेंगे काश के हमको तकलीफें आती, काश की इतनी तकलीफ आती कि हमारी चमड़ियां उधेड़ दी जाती कैंचियों से, इतनी तकलीफ, ताकि हमको भी वो सवाब मिलता जो इनको मिल रहा है। तो दुनिया में आफियत वाले कयामत के दिन तमन्ना किस चीज की करेंगे? काश के दुनिया में थोड़ी और तकलीफ आती थी। तो आज जो तकलीफें आ रही हैं, जो बीमारी परेशानियां जो भी है, आदमी उनको गनीमत जाने, उनमें अल्लाह से राजी रह के सवाब की उम्मीद रखे, अल्लाह की शिकायत न करे, अल्लाह ताला के फैसलों को बुरा ना जाने। बहुत मुमकिन है यही तकलीफें जो आज आप पर आ रही हैं, ये कयामत के दिन आपको बहुत बड़े मर्तबे का दिलाने का जरिया बन जाए और आप कुछ हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ आए बहुत अच्छा हुआ, गई वो लेकिन इतनी बड़ी नेमतें हमेशा के लिए मिल गई। वो तकलीफें अबदी नहीं थी, वो तकलीफें कैसी थी? वक्ती। ये नेमतें कैसी हैं? अबदी, हमेशा के लिए। खत्म होने वाली तकलीफ पर नहीं खत्म होने वाला इनाम, यह अच्छा है, या तकलीफ शिकायत से खत्म हो जाए और इनाम बर्बाद हो जाए, यह अच्छा है सोचने। लिहाजा एक बीमार को जो दुनिया में बीमार है, परेशान हाल है, खास तौर से हमारे ये दर्स उन्हीं लोगों के लिए है कि जो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है और बार बार दिल उनको टोकता रहता है क्या हो रहा तेरे साथ, वो ये सोचे कि ये जो तकलीफ है इस पर अगर मैं राजी रहा इतना बड़ा अल्लाह ताला अजर देगा कि जो लोग दुनिया में बहुत उस बीमारी में नहीं थे, आफियत में थे, कयामत के दिन वो सोचें, आज वो सोच रहे अल्लाह का एहसान अपने को नहीं हुआ ऐसा, आज बोल रहा हूं, आज वो क्या सोच रहा है, मेरे को ऐसी बीमारी नहीं, इसको ये तकलीफ है, मेरे को नहीं अच्छा है। कयामत के दिन आएगा तो मामला उल्टा हो जाएगा, वो क्या बोलेगा, काश कि मेरे को भी तकलीफ रहती, आदत मिला के जा रहा, कहां जा रहा, ऊपर, तू नीचे, ये इससे ऊपर है, हालांकि इसको भी अच्छा मिलेगा लेकिन ये देखेगा ये कहां जा रहा, कैसे जा रहा तू, वही बीमारी थी ना, ऐसा कैसे जा रहा ऊपर, चाय तो मेरे साथ उसी होटल में पीता था सुबह में, हां लेकिन मेरे पास वो तकलीफ थी जो तेरे पास नहीं थी, तो मैं जा रहा अभी, किधर जा रहा, ऊपर, ऊपर जा रहा, अच्छी बात है, तू कहां जा रहा, मैं जा रहा हूं यहां जा रहा हूं, तो ये ऊंची जन्नत, आला जन्नत, बड़ा सवाब, ये उसके लिए जरिया है। लिहाजा अल्लाह ताला जो भी दे रहा है राहत मुसीबत, اس کو غنیمت جانے, مصیبت میں مصیبت کے ہٹانے کی دعا غلط نہیں ہے, لیکن اس پر ثواب جو بھی مل سکتا ہے لوٹ لیں, جو بھی ثواب مل سکتا ہے لوٹ لیں. ایک آدمی جا رہا ہو ایسے راستے سے جہاں نیچے جو ہے اس کے لیے نعمتیں بچھی ہوئی ہیں اسی کے لیے, اور وہ اسی میں سے نکل جائے روتے روتے, سوچئے. بلکہ جو نعمتیں بکھری ہوئی ہیں, ڈالر بڑے بڑے, ہاں امریکن ڈالر پڑے ہوئے نیچے, اٹھا لے وہ اس کے لیے. لقتا کا مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے, ایک مثال کے طور پر ہے. ایک آدمی اس کے لیے بچھی ہوئی نعمتیں ہیں اور وہ روتے روتے جا رہا کہ میرے پیسے کھو گئے, حالانکہ اتنا سب ہیرے موتی جواہرات اس کے لیے بچھے ہوئے ہیں. لے جو لینا ہے, بول رہا اعلان کرنے والا, لے لو جس کو جتنا لینا ہے, اور اس کی تھیلیاں خالی ہیں, جیبیں خالی, اور نکل گیا روتے روتے کہ میرے پیسے کھو گئے وہاں پہ. بے وقوف آدمی یہ ہے, اس کو چاہیے تھا کہ جتنا تھیلی بھر بھر کے لیتا ہے اتنا کہ چل سکے آگے تک, اتنی نعمتیں اس کو مل سکے لے لے. یہ مواقع ہمارے لیے زندگی میں, اس موقع کو ضائع نہ کریں, اس موقع کو ضائع نہ کریں. جتنا ثواب اور اجر لوٹ سکتا ہے آدمی بیماری کے ایام میں لوٹ لے, تاکہ آخرت میں اس کے لیے مراتب کے اونچا ہونے کا وہ ذریعہ بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے, جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفا عطا فرمائے, اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو اجر ثواب سے بھی مالا مال کر دے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.